तो आज हम लोग सेकंड सेशन शुरू करेंगे। थोड़ा सा लास्ट कल जो हमने देखा उसकी पहले पुनरावृत्ति करेंगे, कितना हम लोगों ने ग्रहण किया, और उसके बाद फिर आगे का आज का शुरू करेंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक एक पॉइंट जो कल हमने सीखा, जो आप ग्रहण के सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लगा, वो आप याद करके उसे बोलिए एक एक करके। जहां तक संभव हो वहां तक अलग अलग पॉइंट बोलें, पहले एक पॉइंट आ गया तो दूसरा उससे कुछ अलग जो हमने सीखा वो बोलें, और नहीं संभव हो तो जो भी हमने सीखा वो बोल सकते हैं। तो हम यहां से शुरू करें। कल की क्लास में आपने जो सीखा उसमें से कोई एक चीज, एक पॉइंट जो आपको आपने ग्रहण किया, याद रहा?
सीखना है या काम कुछ करना है तो 100% पार्टिसिपेशन करके काम कर सकते हैं।
100% पार्टिसिपेंट्स मतलब
पूरा इन्वॉल्व हो, जैसे वो भगवान का पद होता है,
हाँ,
तो पूरे भगवान को मानते हैं, फिर उसका दास,
हाँ,
तो वो दासत्व के हिसाब से, हाँ, जो मतलब जितना भी हो सके उतना 100% इन ऑल द सेंस।
तो कल हमने टॉपिक शुरू किया था कि भगवद गीता समझने का तरीका क्या है, तो उसके अंतर्गत फिर हमने देखा था जो पॉइंट आप बता रहे हैं कि भगवान से, जैसा भगवान श्री कृष्ण जो भगवद्गीता स्वयं बताए हैं, वो जैसा प्रोसेस बताए हैं वैसा हम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो सबसे अच्छी संभावना है कि हम भगवद्गीता समझ पाएंगे। तो फिर वो प्रोसेस क्या बताएं भगवान, कि कौन क्वालिफाइड है मेरे इस ज्ञान को समझने के लिए, जो मेरा भक्त होगा, जैसे अर्जुन भगवान का भक्त है, यानी कि वो स्वीकार करता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान और मैं उनका दास, वो अपने को भगवान के समान या उससे ऊपर ऐसा नहीं समझता। तो ये एक क्वालिफिकेशन है। वेरी गुड, आप बताएंगे। अच्छा, कल आए नहीं आप? ओके, निगम जी आप।
लेकिन तो इसके भक्त के बाद जो है फिर सरेंडर टू द अथॉरिटी, जो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है, तो जैसे हम लोग अभी गॉड को ही माने या वैसे इन जनरल डे टू डे लाइफ में किसी को भी मान सकते हैं, हमसे ऊपर
हो,
सो दैट भक्त के बाद दैट सरेंडर टू दैट अथॉरिटी।
हां जी,
तो सरेंडर मींस नॉट टोटली दैट सरेंडर इन दैट सेंस, जिसको सरेंडर मानते हैं कि हार मान ली, सरेंडर मींस दैट टू ओबे दैट ओबीडिएंट
ओबीडिएंट यस
ओबीडिएंट।
तो
यस, एंड हम फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड, जिसको कि हम मान रहे हैं, इसकी बात हमें माननी है, फर्स्ट वी शुड कन्विंस कि दैट यस ही इज अ अथॉरिटी।
यस, वेरी गुड, वी शुड बी, यस, देन ओनली वी कैन फॉलो हिम होल हार्टेडली,
देन ओनली इट इज कॉल्ड द सरेंडर।
यस,
बट इन नॉट इन दैट,
यस,
सरेंडर नॉट बिकॉज़ ऑफ द फियर,
यस,
सरेंडर बिकॉज़ ऑफ द फियर अर्जुन दैट इज,
यस, यानी एज सर्टेन करना पड़ेगा कि ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी। यस, तो फिर आप उस तरफ इंगित कर रहे हैं कि जो हमने डिस्कस किया था कि ज्ञान प्राप्त करने के दो तरीके हैं, तो एक तो है असेंडिंग और दूसरा है डिसेंडिंग। तो जो आप बात कर रहे हैं तो वो कौन से प्रोसेस में आता है? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में, यानी अथॉरिटी से सुनना, तो वो डिसेंडिंग प्रोसेस हो गया। यस,
एंड वी हैव टू बी ओबीडिएंट।
हाँ जी, तो असेंडिंग प्रोसेस से क्या हम भगवान को समझ सकते हैं, फिर ये प्रश्न यदि मैं पूछूं? हाँ जी, वो इम्परफेक्ट रहेगा, इसलिए परम सत्य को जानने के लिए केवल डिसेंडिंग प्रोसेस वही काम आ सकता है, यानी जिसमें हम परम सत्ता जो खुद सब बनाने वाले हैं, क्रिएटर हैं, उनसे यदि हम ज्ञान प्राप्त करें। बहुत अच्छा, आप
समर्पण की भावना बहुत प्रबल हो तो ही ज्ञान प्राप्त
होता है।
ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग में पूर्ण रूप से आस्था रखें।
असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में?
नहीं, डिसेंडिंग में।
अच्छा,
शास्त्र पूर्ण है।
ओके, हाँ, शास्त्र पूर्ण है, तो डिसेंडिंग में जो शास्त्र हैं वो भगवान की वाणी, यानी वो सुप्रीम अथॉरिटी से आए हैं। तो मैं कहूं कि क्या आप इसके कुछ फैक्ट बता सकते हैं कि कोई साधारण आदमी कैसे विश्वास कर ले कि हाँ ये सुप्रीम अथॉरिटी है, ये परफेक्ट है नॉलेज? आप इस विषय में शास्त्र में से कुछ, जो हमने कल कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, तो कुछ ऐसे फैक्ट आपको याद हैं जिसके बेस पे आप कह सकते हैं कि देखो ये बताता है कि शास्त्र जो है,
शास्त्र में लिखा है।
नहीं, कि शास्त्र में लिखा है लेकिन हम उससे समझ सके कि हाँ देखो इसलिए हम कह सकते हैं कि शास्त्र जो है वो हमेशा परफेक्ट है, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो शास्त्र में ऐसी हैं जो सही सिद्ध हुई हैं, जो हो रही हैं हमेशा, क्यों?
कल आपने जो बताया था उसके मुताबिक शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो पूर्ण रूप से सत्य है। और इसका उदाहरण कई बार हमारे साइंटिस्ट जो है
हाँ
वो भी देते हैं हाँ कि भाई ये चीज जैसे पृथ्वी गोल है।
हाँ हाँ बहुत अच्छा,
शास्त्र में आपने
दिया है, वेरी गुड।
जबकि हम बाद में सिद्ध किया,
यस यस,
इस प्रकार काफी उदाहरण है शास्त्रों में
हाँ जी,
कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं
हाँ जी,
लेकिन जिन पर हमें एक्सपेरिमेंट करके विश्वास करना पड़ता
है, यस, तो वो सिद्ध हो रहा है सबके, सही है। फिर हमने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, चलिए मैं बात बताऊंगा आप,
मैं ये समझ पाया कि जो भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण एज इट इज ग्रहण करें,
यस,
मतलब इसके अंदर क्या है, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन,
या अपनी अपनी मान्यता मिक्स किए बिना,
एज इट इज जो इसमें है उसी रूप में हम ग्रहण,
यस, वेरी गुड, एज इट इज। क्योंकि यदि हम उसमें अपनी तरफ से कुछ एडिशन या कुछ सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो फिर वो परफेक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि हम इम्परफेक्ट हैं और हमने कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर दिया तो फिर वो ज्ञान परफेक्ट नहीं रहेगा। इसलिए एज इट इज लेने की जरूरत है, जैसा बताया जो करती हूँ एज इट इज देने की बहुत जरूरत, बहुत अच्छा। हम डिस्कस कर रहे हैं, कल हमने जो पॉइंट्स ग्रहण किए उसमें से कोई एक पॉइंट जो आपको याद रहा जिससे कि उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, क्या हमने सीखा कल, आप थोड़ा सोच लिए दो मिनट क्योंकि आप थोड़ा बाद में आए हैं, आप बताएंगे, नहीं आपसे डिस्कशन हो गया हमारे रास्ते में, ओके आप बताएंगे, मत
ना भी ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है, ये सब ईश्वर के द्वारा स्वयं कहा गया है, इसलिए ये सुप्रीम ज्ञान है,
yes.
इसको मान के और इसमें जो कर्म किए हैं वो सारे भगवान को समर्पित करते रह के अपनी जिंदगी निकालनी चाहिए, जितने भी कर्म है सकर्म वो जो भी हो रहे हैं अपने हाथ से सकर्म करें, सज्जन वाले कर्म करें तो अच्छा है, लेकिन जो भी कर्म हो दिन भर में वो सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए।
ओके वेरी गुड, माता जी आप बताएंगे कुछ,
यही हमारा
ठीक है। तो फिर हम इस आधारभूत जानकारी के साथ कि भगवद गीता समझने का तरीका क्या है, आज हम आगे बढ़ते हैं कि ईश्वर कौन है। यहां हम केवल मात्र एक नाम नहीं लेने दे जा रहे कि ये ईश्वर है, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ईश्वर का मतलब क्या है, भगवान का मतलब क्या है, क्योंकि जैसा हम पूरा डिस्कशन देख रहे हैं यहां कुछ भी ऐसे ही मात्र एक मान्यता यह एक अंधविश्वास जैसी चीज नहीं है, पूरे एक वैज्ञानिक दृष्टि से, क्योंकि शास्त्र एक विज्ञान है तो हर एक चीज की डेफिनेशन है, जैसे साइंस में हर एक चीज डेफिनेशन होती है ऐसे डेफिनेशन है, और फिर हम उस डेफिनेशन को सामने रख करके फिर देख सकते हैं कौन भगवान कहलाने लायक है। तो आज के हम क्लास में स्टार्टिंग जो कर रहे हैं तो तत्व, ईश्वर तत्व का मतलब क्या है, भगवान से क्या मतलब है, ये जानना जरूरी है, तब हम सर्टिफाई कर सकते हैं हाँ यस वी कैन बिलीव दैट ही इज गॉड और नॉट गॉड लाइक दैट। तो भगवत गीता के अंदर बेसिकली पांच सब्जेक्ट मैटर जो है वो डिस्कस हुए हैं, ये भी हमने कल थोड़ा सा हिंट दिया था, उसमें सबसे पहला जो है वो है ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, नियंता। तो परम ईश्वर मीन्स सुप्रीम कंट्रोलर, जो भी एग्जिस्ट करता है, जो उन सबका कंट्रोलर है, जो उन सबको नियंत्रित करता है, उसे परमेश्वर कहते हैं, सुप्रीम कंट्रोलर कहते हैं। तो हम ये भौतिक जगत देखते हैं, इसमें सब प्लैनेट्स चल रहे हैं, अलग अलग व्यवस्था लॉज हैं, भगवान मतलब वो जो इन सबको कंट्रोल किए हुए हैं। जीव जो सेकंड सब्जेक्ट है वो एक छोटा ईश्वर है, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है, भगवान का अंश है हम सब, इसलिए अंश होने के नाते हम में भी वो सभी गुण हैं जो भगवान में। तो भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, हम भी छोटे कंट्रोलर हैं, हम ये एक बिल्डिंग बना सकते हैं या हम एक ट्रेन का ट्रैफिक या बस का ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, पर हम प्लैनेट्स का ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सन अपने टाइम पर आए, जैसे निगम साहब हैं वो तो देख सकते हैं कि सब एम्प्लॉयज जो हैं वो टाइम पर 10 बजे आ जाएं ऑफिस में, लेकिन भगवान सूरज जो है हर दिन टाइम पर उगे वो कंट्रोल वो कर सकते हैं। हम एक सिटी बना सकते हैं तो भगवान एक ब्रह्मांड बनाते हैं, कई कई हजारों हजार असंख्य ब्रह्मांड बनाते हैं। तो ये है परमेश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर, जो हर चीज को कंट्रोल करता है, जिसका हर चीज के ऊपर कंट्रोल है, उसे कहते हैं सुप्रीम कंट्रोलर। इसके विपरीत जो हम जीव हैं वो सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है, हम छोटे कंट्रोलर हैं, माइन्यूट कंट्रोलर्स। हम खुद कंट्रोल किए जाते हैं उस सुप्रीम कंट्रोलर के द्वारा। तो सबसे पहला गुण जो हम देखें ईश्वर कहलाएं, मतलब कौन ईश्वर है, सबसे पहला सुप्रीम कंट्रोलर, सेकेंड क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का बनाने वाला, हर चीज का बनाने वाला। जन्मादि अस्यतः, शास्त्रों में ब्रह्म सूत्र में जन्मादि यस्यतः, जिससे सब चीज का जन्म होता है, जिससे सब चीज उद्भूत होती है, वो सेकेंड क्वालिफिकेशन है भगवान ईश्वर परमेश्वर कि वो हर एक चीज का जिससे जन्म होता है, हर चीज जिससे निकलती है, कोई भी चीज उससे इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे हमारे एक पिता हैं, हमारा जन्म उनसे हुआ है, हमारे पिताजी के एक पिता हैं, ऐसे हम चलते रहें, यदि खोज करते रहें, जहां फुल स्टॉप पे पहुंच जाएंगे वो है भगवान। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का कारण, जिसके आगे और कोई कारण नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं भगवान को किसने बनाया, तो ये प्रश्न गलत है, यानी हम समझ नहीं रहे हैं कि भगवान की डेफिनेशन क्या है। भगवान की डेफिनेशन है भगवान वो जिसने सबको बनाया, तो स्वाभाविक है कि वो उसका बनाने वाला कोई नहीं है, उसको बनाने वाला कोई नहीं, वो सर्व कारण कारण, ही इज अ फुल स्टॉप, सभी कारणों में जो फुल स्टॉप है वो है भगवान। तो ये दूसरा, भगवान जो है वो सभी चीज के क्रिएटर है। फिर क्रिएटर होने की वजह से प्रोप्राइटर, सभी चीज के स्वामी भी ऑब्वियसली वही है। जब क्रिएटर बनाने वाले वो हैं तो स्वाभाविक है कि मालिकी किसकी होगी, भगवान की होगी, प्रोप्राइटर वो है। जैसे हम देखें एक राज्य में एक राजा होता है, वो अपने अंदर जो सिटीजन्स होते हैं उनको एक जगह अलॉट कर देता है, आपको ये जगह आपके लिए रहने के लिए, आपको ये जगह रहने के लिए, आपको ये जगह रहने के लिए। तो अलॉटमेंट करने के बाद उस जगह पर उनका अधिपत्य हो गया, नाउ दे आर कॉल्ड प्रोप्राइटर। जैसे अभी हम देखें तो ये किसी एक की प्रोप्राइटरशिप में है, लेकिन वास्तविक प्रोप्राइटर तो इस पूरे जगह का गवर्नमेंट है, हम सेकेंडरी प्रोप्राइटर है, प्राइमरी प्रोप्राइटर गवर्नमेंट है। उसी प्रकार से हर चीज का जो अल्टीमेट प्रोप्राइटर है वो है भगवान। अल्टीमेट प्रोप्राइटर किसी को हम कब कह सकते हैं, जब वो व्यक्ति उस चीज को हर समय हमेशा के लिए अपने पास रख पाए, कोई भी ऐसा कारण ना बन सके जिससे वो चीज उससे अलग हो जाए, तब हम उसे रियल प्रोप्राइटर कह सकते हैं। जैसे हम कोई जमीन खरीदते हैं तो हम कहते हैं ये जमीन हमने खरीदी, अभी हमारी मालिकी हो गई, लेकिन कुछ समय के लिए वो जमीन हमारे पास रहती है, जब हम चले जाते हैं तो जमीन वहीं रह जाती है और हम छोड़ देते हैं, फिर कोई दूसरा आदमी उस पर जमीन पे आ जाता है, यानी कि हम उसके रियल प्रोप्राइटर नहीं है। पर भगवान वो जो हमेशा सदैव सदैव के लिए हर चीज के मालिक रहते हैं वो है भगवान, थर्ड क्वालिफिकेशन सुप्रीम प्रोप्राइटर। फोर्थ, क्योंकि वो क्रिएटर हैं, प्रोप्राइटर हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से सुप्रीम एंजॉयर, परम भोक्ता, सुप्रीम एंजॉयर, परम भोक्ता। अगर आपके बैंक में 1,00,000 रुपए है आपका अकाउंट में, तो स्वाभाविक है कि वो किसके भोग के लिए है, आपके भोग के लिए, क्योंकि आप उसके इस समय मालिक हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि हर चीज भगवान की संपत्ति है, तो स्वाभाविक रूप से हर चीज किसके भोग के लिए है, भगवान के भोग के लिए है। हर चीज का हेतु है भगवान के एंजॉयमेंट के लिए, भगवान के भोग के लिए। तो इसलिए भगवान जो है वो परम भोक्ता है। जैसे एक गवर्नमेंट के अंदर देखें तो वो किंग अलॉट करता है राजा कि आप ये एंजॉय कर सकते हैं, इतनी फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं, पर अल्टीमेट एंजॉयर तो वो है। तो उसी प्रकार से भगवान मतलब जो परम भोक्ता है, सुप्रीम एंजॉयर। तो जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है हर चीज के वो एंजॉयर, यानी हम जो उनसे उद्भूत हैं जीव, उसके भी एंजॉयर भगवान। लेकिन इस भौतिक जगत में एट प्रेजेंट हम लोग क्या सोचते हैं, वी आर द प्रोप्राइटर, वी आर द क्रिएटर, वी आर द कंट्रोलर एंड वी आर द एंजॉयर। जो भी हम सब देखते हैं प्रकृति, हम उसको किस दृष्टि से देखते हैं कि ये सब मेरे भोग के लिए है, ये सब मेरे कंट्रोल में है। हम सब कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं प्रकृति के ऊपर, अपना नियम बदलना चाहते हैं, चंद्रमा पर जाना चाहते, देखना चाहते हैं कैसे ओ आदमी भगवान ने क्या बनाया, हम बना देंगे आदमी। ये मेंटेलिटी है हमारी क्रिएटर, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं इसलिए हमारे अंदर ये इंक्लिनेशन है टू बिकम क्रिएटर, इसलिए हम कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। हमारे अंदर कंट्रोल करने की इच्छा है क्योंकि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, तो वो सब इंक्लिनेशन है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन एट प्रेजेंट हम ये भूले हुए हैं कि हम लोग सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है, सुप्रीम क्रिएटर नहीं है, सुप्रीम एंजॉयर नहीं है, हम सुप्रीम एंजॉयर नहीं है, हम भगवान के सबॉर्डिनेट हैं, उनके अंडर में हैं, उनके अंश हैं। इसीलिए उनके अंश होने के नाते, सबॉर्डिनेट होने के नाते हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा। जैसे ये हाथ, ये शरीर है, इसके अलग अलग अंग हैं, हाथ पैर इत्यादि जो शरीर के अंग हैं, तो क्योंकि वो शरीर के अंग हैं इसलिए हाथ पैर इत्यादि का कार्य क्या है, इस शरीर की सेवा, कॉपरेट करें आपस में इस पूरे शरीर के सेवा के लिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, मान लीजिए हाथ है वो शरीर के साथ कॉपरेट करना बंद कर दे, जैसे पैरालिसिस आता है या गैंग्रीन हो जाए, बेकार हो जाए, हाथ सड़ जाए, नाउ ही इज नो मोर कॉपरेटिंग विद द बॉडी, तो क्या किया जाता है, ऐसे हाथ का काट करके फेंक दिया था, यूजलेस, अभी उसका कोई यूज नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान इस पूरी सृष्टि के, इस भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक एक जगत, वो सब के रचयिता और केंद्र हैं और हम सब उनके अंश हैं। इसीलिए हमारा और भगवान का जो संबंध है वो क्या है कि हम सब भगवान के सेवक के रूप में उनकी सेवा के लिए हैं, वो एंजॉयर हैं और हम उनके सेवक हैं। और जब हम सुप्रीम एंजॉयर भगवान की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एंजॉय करते हैं। जैसे अगर सेवक अपने स्वामी की अच्छी सेवा करता है तो उस रिलेशनशिप में वो एंजॉय कर सकता है, लेकिन यदि स्वामी खुद सेवक यदि खुद स्वामी बनने लगे, कोशिश करे, तो नौकरी से बाहर। तो ये जीव और ईश्वर में अंतर है। फिर ईश्वर जो है वो चेतन है, ही इज कॉन्शियस, सुप्रीमली कॉन्शियस, एक ही समय पर ही इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग, जो भी एग्जिस्ट करता है ही इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग। और क्योंकि जीव भगवान के अंश हैं इसलिए हमारे अंदर भी चेतना है, हम भी चेतन हैं, लेकिन हमारी चेतना और भगवान की चेतना में अंतर है। हमारी चेतना बहुत संकुचित है, एक बहुत छोटे दायरे में है, पर भगवान की चेतना सभी जगह व्याप्त है। जैसा भगवान बताते हैं भगवद्गीता में, हमें अपने शरीर के प्रति हम चेतन हैं, हमारे शरीर में कोई पेन होता है, प्लेजर होता है, हमें उसका अनुभूति होती है, लेकिन आपके शरीर का पेन प्लेजर मेरे को अनुभूति नहीं होती है। तो हमारी चेतना संकुचित है, लेकिन भगवान कौन है जिनकी चेतना सर्वव्यापी है, जो सभी के प्रति चेतन है। तो वह बताते हैं कि मैं जो अपना परमात्मा रूप है, जिस रूप में मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूं, उसके माध्यम से मैं सर्वव्यापी हूं, आई एम एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, सो आई एम एट द, सो एक ही समय भगवान सभी चीजों के प्रति कॉन्शियस है, मैटर नॉन मैटर सभी में एग्जिस्ट करते हैं भगवान परमात्मा के रूप में, इसलिए एट वन टाइम ही इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग। इसी दृष्टिकोण से हम देखें तो भगवान बताते हैं भगवद्गीता में, जब अर्जुन ने पूछा, पहले भगवान ने बोला कि यही ज्ञान मैंने आज से करोड़ों करोड़ों साल पहले विवस्वान को दिया था, तो अर्जुन ने पूछा कि ये कैसे संभव है, आप तो मेरे समकालीन हैं, आपका और मेरा जन्म तो आगे पीछे हुआ है और विवस्वान तो कितना पहले हो गए, तो ये कैसे मैं समझूं कि आपने उनको ये ज्ञान दिया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुना, तान्यम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, अनेक अनेक बार मैं भी आ चुका हूं और तुम भी आ चुके हो, बहुनी में जन्मानी बहुत से जन्म, लेकिन हमने और तुम्हें डिफेंस किया है, तान्यम वेद सर्वाणी, मैं उन सबको याद कर सकता हूं जो भी मैं आज तक जब जब आया हूं, तुम न पेत था परंत पर, लेकिन तुम नहीं जान सकते, तुम भूल जाते हो। तो ये डिफरेंस है भगवान की चेतन शक्ति में और हमारी चेतन शक्ति में। फिर कई बार ऐसा सोचा जाता है कि जो जीव जो थोड़ी चेतना वाला है, जब वो सिद्धि प्राप्त करता है तो वो भी पूर्ण चेतना, परम चेतना वाला हो सकता है, लेकिन भगवद गीता शास्त्र इसका खंडन करते हैं। जीव अपनी वर्तमान स्थिति में या तो सिद्धि की स्थिति में कभी भी संपूर्ण चेतना को प्राप्त नहीं हो सकता, उसकी चेतना एक इंडिविजुअल रहती है, वो सुप्रीम कॉन्शियस कभी नहीं हो सकता भगवान की तरह, वो डिफरेंस हमेशा से बना रहता है। इसलिए भगवान बताए हैं ममई वंशो जीवलोक के जीव भूत सनातन, ये जो मेरे अंश हैं आप जीव वो सनातन है, यानी सनातन रूप से आप अंश रूप में रहते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आप जैसे माना जाता है एक सब होमोजीनियस था, उसमें से अभी एट प्रेजेंट कुछ अलग हो गए और फिर दोबारा होमोजीनियस हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे, ऐसी थ्योरी शास्त्र के अनुसार गलत है, वो थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, वो सही नहीं है, वो पूर्णता सही ज्ञान नहीं है वो। तो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस रहती है जो कभी भी सुप्रीम कॉन्शियसनेस के बराबर ना तो कंडीशन वर्तमान स्थिति में ना तो सिद्ध अवस्था में कभी हो सकती है। फिर जो हमारी चेतना है, एक और प्रश्न उठता है, जैसे साइंटिस्ट लोग क्या मानते हैं कि एट प्रेजेंट जो हमारी चेतना है जो है वो मेटीरियल कॉम्बिनेशन जब होता है मैटर का, उसकी एक सर्टेन स्टेज में पहुंचने पर वही मेटीरियल कॉम्बिनेशन की वजह से चेतना के सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। चेतना मैटर से ही डेवलप होती है ऐसा साइंटिस्ट लोग मानते हैं, यानी आत्मा कोई चीज नहीं है अलग से, बल्कि भौतिक शरीर ही मैटर ही जड़ तत्व ही आपस में मिलकर के एक सर्टेन स्टेज पहुंचने पर कॉम्प्लिकेशन के वही चेतन प्रतीत होते हैं। पर भगवदगीता के अनुसार ऐसा नहीं है, भगवदगीता के अनुसार चेतना का कारण है चेतन कण जिसे आत्मा कहते हैं, जिसकी वजह से शरीर चेतन प्रतीत होता है, और जैसे वो चेतन कण निकलता है शरीर से ये शरीर मृत प्रतीत होता है, मृत हो जाता है, एक्चुअली मृत ही है पर जब तक चेतना उसके अंदर है तब तक वो लगता है ज्वलंत जीवित। तो हम ये कैसे मान सकते हैं, साइंटिस्ट लोग ऐसा बोल तो सकते हैं, लेकिन अगर केवल मेटीरियल कॉम्बिनेशन से ही चेतना विकसित होती है तो क्यों नहीं एक डेड बॉडी के अंदर वो दोबारा से मेटीरियल कॉम्बिनेशन सही करके आज तक एक भी मृत व्यक्ति को क्यों नहीं जीवित किया जा सका। आज साइंटिस्ट लोग सब जानते हैं डीएनए स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट, न्यूक्लियोटाइड्स पेप्टाइड्स सब जानते हैं डिटेल्स, फिर भी एक मरी हुई चींटी को भी दोबारा से डीएनए आरएनए कॉम्बिनेशन करके क्यों उसको जीवित नहीं कर पाए। अगर वो केवल मेटल कॉम्बिनेशन की वजह से है तो पॉसिबल होना चाहिए, नहीं है। थ्योरी ऐसी मानी जाती है कि हम सब केमिकल से बने हैं, हम सब लोगों ने पढ़ा है बिग बैंग थ्योरी और केमिकल स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, कि बहुत समय पहले एक केमिकल्स का सब एक सूप था बहुत बड़ा प्रिमोडियल सूप, एक लाइटनिंग हुई कुछ और उसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए जिसकी वजह से एक फर्स्ट सेल बन गया और फिर पता नहीं कैसे वो सिर्फ एक सेल दो में बन गया और फिर दो से चार और चार से आठ और इस तरह धीरे धीरे करके सब आ गया। लेकिन साइंस का बेसिक प्रिंसिपल है, साइंस की थ्योरी कोई भी कैसे बनती है, सबसे पहला स्टेप है साइंस की थ्योरी देने के लिए ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, वो हमारे ऑब्जर्वेशन में होनी चाहिए कि ऐसी चीज होती है, उसके बेस पर हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं और फिर इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे वर्तमान एक्सपीरियंस में ऐसी कहीं भी कोई चीज है जहां केवल केमिकल से मिलकर के जीवन बन रहा है, आज वर्तमान में ऐसा कहीं एक्सपीरियंस है किसी साइंटिस्ट ने किया है आज तक, हमको हो रहा है एक्सपीरियंस, यानी ऑब्जर्वेशन का ही नहीं, जो हम तथ्य जो थ्योरी बना दिए उसका एट प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन है नहीं। साइंटिस्ट लोग क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं करोड़ करोड़ साल पहले हुआ था, और तो ठीक है हुआ था तो अभी करके दिखाइए फिर लेबोरेटरी में, नहीं नहीं अभी नहीं हो पा रहा है लेकिन हम कर देंगे, यानी वर्तमान में कुछ नहीं है, एक भी प्रूफ नहीं है वर्तमान में कि केमिकल्स के मात्र मिलने से जीवन हो रहा है, ऐसा एक भी प्रूफ इस समय वर्तमान में नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, पास्ट में हुआ था और फ्यूचर में होगा, तो ये तो साइंस नहीं कहलाई जा सकती ना, साइंस मतलब प्रूफ, तो वो थ्योरी स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकती। फिर जीव की चेतना में और भगवान की चेतना में एक और बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि जीव की चेतना जड़ प्रकृति के द्वारा प्रभावित हो सकती है, पर भगवान की चेतना कभी भी जड़ प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो यहां पर अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, शक्ति मान और शक्तियां। भगवान शक्तिमान है और उनकी अनेक अनेक शक्तियां हैं। भगवान की जो अनेक अनेक शक्तियां हैं उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन प्रकार की शक्तियां बताई गई, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी, तटस्थ। जो ये भौतिक प्रकृति है जो बताई गई है आठ तत्वों की बनी होती है, पंचभूत, भूमिर, अप, नल, वायु, खम, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये पांच ग्रॉस एलिमेंट्स और तीन सूक्ष्म एलिमेंट्स, सटल एलिमेंट्स, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। माइंड भी मटेरियल एलिमेंट है, माइंड भी मैटर है, इंटेलिजेंस भी मैटर है, फॉल्स ईगो भी मैटर है। ये सब आठ भगवान बताते हैं भिन्ना प्रकृतिम अष्टधा। ये जो आठ है ये मेरी भिन्न प्रकृति, सेपरेटेड एनर्जी, इन्फीरियर एनर्जी, ये इन्फीरियर कहलाई गई है। क्वालिटी सी कैसी है इस मटेरियल एनर्जी की? इन्फीरियर, निम्न स्तर की है। क्यों? क्योंकि ये जड़ है, चेतन नहीं है, इसमें चेतना नहीं है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो में चेतना नहीं है। इसके विरुद्ध भगवान की दूसरी शक्ति जो है अंतरंगा और तटस्थ, वो क्वालिटी वाइज है सुपीरियर नेचर की, परा प्रकृति, परा प्रकृति। तो तटस्थ शक्ति यानी कि जो जीव हैं वो मिलाकर के कह जाती हैं तटस्थ शक्ति, मार्जिनल एनर्जी। अपरयम इतस्तु अन्यम, भगवान बताते हैं कि आठ ये शक्तियां जड़ प्रकृति है, अपरयम इससे ऊपर, अपरयम इतस्तु अन्यम भिन्ना प्रकृति, अपरयम इतस्तु अन्यम विद्धिम प्रकृति मे पराम, एक और परा प्रकृति है मेरी इससे अलग, जीवभूता महाबाहो, जो किसकी बनी है? जीवभूत, लिविंग एनिटीज की बनी है, आत्माओं की बनी है। ययेदं धारयत जगत, जो इस जगत का धारण करती है। जैसे हम आत्मा अभी एक शरीर को धारण किए हुए हैं, ऐसे इस भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत कॉम्बिनेशन है आत्मा और भौतिक प्रकृति का, हर जगह हर चीज में कॉम्बिनेशन मिलता है। तो आत्मा जो है, जीव जो है, वो सुपीरियर नेचर का है क्योंकि वो चेतन है, उसमें चेतना है। लेकिन जो ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये सब जो एलिमेंट्स की बनी जितनी भी ये प्रकृति है, जो इस जीव के द्वारा चलती है, जैसे हम कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार से भगवान जो परम चेतन है वो इस बड़ी प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। तो ये सुपीरियर नेचर और इन्फिनेचर दो अलग अलग दो प्रकार की क्वालिटीज हैं भगवान की शक्तियों की। तो तटस्थ शक्ति सुपीरियर नेचर है और मेटेरियल एनर्जी ये इन्फीरियर नेचर है क्योंकि चेतन नहीं है। अंतरंग शक्ति क्या है? अंतरंग शक्ति है जिस शक्ति का आध्यात्मिक जगत बना होता है, उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। भौतिक जगत जिस शक्ति का बना है उसे बहिरंग शक्ति, आध्यात्मिक जगत जिस शक्ति का बना है उसे आध्यात्मिक शक्ति, और जो जीव है वो तटस्थ शक्ति। तटस्थ मतलब बीच में। क्यों बीच में? क्योंकि या तो वो भौतिक जगत के में रह सकते हैं या तो आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं, या तो भौतिक शक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी के कंट्रोल में आ सकते हैं, या तो वो इंटरनल एनर्जी कंट्रोल में आ सकते हैं, इसलिए उनको तटस्थ कहा है, बीच में। तो ये तीन प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं। तो हम सब जो जीव हैं वो तटस्थ शक्ति में आते हैं। अंतरंग और तटस्थ दोनों ही, दोनों का जो क्वालिटी है, गुण है, वो सुपीरियर नेचर का है, यानी वो दोनों चेतन है। तो भगवान चेतन है और हम सब उनकी एनर्जी है, प्रकृति है। तो हम भगवान के अंश हैं लेकिन फिर भी हमें प्रकृति कहा गया है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं प्रकृति मीन्स नॉन पर्सनल एनर्जी, लेकिन हमारे शास्त्र में जो कंसेप्ट है एनर्जी का वो क्या है, प्रकृति का जो कंसेप्ट है वो क्या है? प्रकृति मीन्स जो स्वामी के द्वारा कंट्रोल की जाए और जिसका भोग किया जाए उसे प्रकृति कहते हैं, विच इज एंजॉयड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्रोप्राइटर, उसे प्रकृति कहते हैं। यानी फीमेल जेंडर प्रकृति, विच इज कंट्रोल्ड बाय द एनर्जेटिक। तो इस दृष्टि से हम जो जीव हैं वो भी प्रकृति हैं, क्योंकि हम भगवान के कंट्रोल में रहते हैं और हमारा हेतु है भगवान की सेवा, सो वी आर ऑल्सो कंसिडर्ड प्रकृति। लेकिन हम जो अपरा प्रकृति है, जो भौतिक जगत है, इससे अलग कैसे हैं? हम सुपीरियर नेचर के हैं, हमारी क्वालिटी है वही जैसी भगवान की है। तो भगवान में और हम में समानता भी है और भेद भी है। समानता क्या है? गुणों में समानता है, क्वालिटी वाइज हम भी सुपीरियर, हम भी चेतन, भगवान भी चेतन। लेकिन अंतर क्या है, हम में और भगवान में अंतर क्या है? क्वांटिटी में डिफरेंस है। भगवान विभू और हम अणु, भगवान सुप्रीम कॉन्शियस, हम माइनिट कॉन्शियस, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर, हम माइनिट कंट्रोलर। तो हम क्या है? टाइनी गॉड है, वी आर, वी कैन बी सेड टू बी टाइनी गॉड, क्योंकि गुण सब भगवान के ही हैं लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। तो ये हमारा संबंध है भगवान का और जीव का। तो क्योंकि हम टाइनी हैं, हम सबॉर्डिनेट हैं भगवान के, इसलिए वास्तव में जो हमारा एक रिलेशन है भगवान के साथ वो है हमेशा सबॉर्डिनेट जो है वो सुप्रीम की सेवा करता है। दिस इज ए नॉर्मल रूल। तो इसलिए हमारा जो पर्पस है, फंक्शन है, वो है भगवान की सेवा करना। जैसे हमने बताया ये अंश जो है, ये अंग है शरीर के, वो शरीर की सेवा करते हैं, दैट इज देयर नेचुरल पोजिशन। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, मान लीजिए हाथ पैर सोचने लगे कि हम रसगुल्ला खुद खाएंगे, रसगुल्ला हाथ में आया हम खुद उसको खाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। जब वो पेट के अंदर डालेंगे तब ऑटोमेटिकली जो भी पोषण है सब पहुंचेगा अपने आप, सब हाथ में, पैर में, सब जगह पहुंचेगा, उनको चिंता की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से यदि हमें पेड़ में पानी देना है तो हम किसी अलग अलग फल में, पत्ती में पानी नहीं डालेंगे, हम जड़ में पानी डालेंगे। उसी प्रकार से भगवान इस सभी सृष्टि की जड़ है, मूल है, इसीलिए हर चीज यहां जो बनी है वो भगवान की सेवा के लिए बनी है, भौतिक प्रकृति, हम सब। तो अभी महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि जो हमारी वर्तमान स्थिति है, हम वैसे तो आत्मा हैं, सुपीरियर नेचर के हैं, पर एट प्रेजेंट हम लोग ये इन्फीरियर भौतिक प्रकृति के द्वारा कंट्रोल हो गए हैं, जो कि एक मिसमैचिंग है। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो मिसमैचिंग हो जाएगा। ऐसे भी क्या हो रहा है कि हालांकि हम हैं तो सुपीरियर नेचर के, हम हैं तो चेतन, पर एट प्रेजेंट हम लोग इन्फीरियर जो मेटेरियल नेचर है उसके द्वारा कंट्रोल किए गए हैं। हमें एक शरीर धारण करना पड़ा है, इस शरीर की वजह से बाबा जन्म मरण इत्यादि सभी कष्टों को झेलना पड़ता है। तो इसका कारण क्या है? जब हम जो हमारी नेचुरल पोजिशन है जीव की, कि भगवान की सेवा करना, जब हम ये सेवा से विमुख हो जाते हैं तब तुरंत हम भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। जब हम भगवान के सेवा नहीं करना चाहते, उनके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं, तो हमें माया के कंट्रोल में रहना पड़ता है। कंट्रोल में तो रहना पड़ेगा ही, क्योंकि वो तो वी आर नॉट फ्री। केवल हमको ये डिसाइड करना है भगवान के कंट्रोल में रहना है या भगवान की माया शक्ति कंट्रोल में रहना है। जैसे हम सब सिटीजन्स हैं, हम भी कंट्रोल्ड हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और जो जेल के अंदर लोग बैठे हैं, जेल कैदी हैं, वो भी कंट्रोल किए जाते हैं वही सेम गवर्नमेंट के द्वारा। पर कैदी कौन बनता है? कैद में किसको जाना पड़ता है? जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करना चाहता उसे कैद में जाना पड़ता है, जहां जबरदस्ती उसे उसी सरकार के नियमों का अंडर पनिशमेंट पालन करना पड़ता है। फ्री तो फ्री भी नहीं हो पाता। तो उसी प्रकार से जैसे गवर्नमेंट के दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक सिविल डिपार्टमेंट और एक क्राइम डिपार्टमेंट, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत है सिविल डिपार्टमेंट, जहां वो सब जीव हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। दे ओबे द रूल्स ऑफ गॉड, भगवान के नियमों का पालन करते हैं। सो दे आर गिवन फ्रीडम। जैसे सिटीजन को बहुत फ्रीडम होती है, आप कहीं भी जा सकते हैं इंडिया में, कहीं भी आप मकान बना सकते हैं, कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हैं। पर जब हम सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं, कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर हमें कैद में, छोटी सी जगह में रहना पड़ता है, कोई फ्रीडम नहीं। उसी प्रकार से जब हम, हालांकि हम भगवान के सेवक हैं, लेकिन जब हम विद्रोह करते हैं कि नहीं, वी डोंट वांट टू सर्व यू, वी वांट इंडिपेंडेंस, वी डोंट वांट टू सर्व यू, हम आपको सर्व नहीं करना चाहते हैं, रिजल्ट क्या होता है? भगवान हमको क्राइम डिपार्टमेंट भेज देते हैं। ये भौतिक जगत क्या है? भगवान का क्राइम डिपार्टमेंट है। दिस इज लाइक ए प्रिजन हाउस, ये प्रिजन हाउस की तरह से। यहां उन जीवों को आना पड़ता है जो भगवान की सत्ता का विद्रोह करते हैं, जो भगवान का विद्रोह करते हैं, उनकी सत्ता स्वीकार नहीं करते, उन्हें यहां अंडर पनिशमेंट आना पड़ता है। और यहां बाई फोर्स माया शक्ति जो है, बहिरंगा शक्ति, उसके प्रभाव में रहकर के हमें सेवा करनी पड़ती है। सेवा तो करना पड़ेगा ही, दैट इज सनातन धर्म ऑफ जीवा। ये विषय हम आगे और लेंगे। धर्म मीन्स क्या होता है? धर्म ऐसा नहीं हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, ये एक्चुअली रिलीजन है, पर धर्म अलग है। इंग्लिश में कोई भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं है धर्म का। रिलीजन इज ए, जैसे डिक्शनरी में आप देखें मीनिंग रिलीजन का क्या है, ए काइंड ऑफ फेथ। तो फेथ तो बदल सकती है, आज कोई हिंदू है कल मुस्लिम हो सकता है, मुस्लिम से हिंदू हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, फेथ बदल सकती है। फेथ व्यक्ति करता है किसी एक्सटर्नल रीजन से, मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है इसलिए मेरी श्रद्धा इसमें है, मैं ये बिलीव करता हूं। पर धर्म इससे अलग है। धर्म क्या है? संवैधानिक गुण और कर्तव्य, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिटी नेचर एंड ऑक्यूपेशन, वो धर्म कहलाता है। जैसे अग्नि का धर्म है ऊष्मा देना और प्रकाश देना। क्या हम कभी अग्नि को अलग कर सकते हैं ऊष्मा और प्रकाश से? जहां अग्नि होगी वहां ऊष्मा प्रकाश होगा ही। अगर अग्नि है लेकिन ऊष्मा प्रकाश नहीं है तो मतलब ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो ऊष्मा प्रकाश अग्नि का धर्म है। यानी धर्म क्या है? किसी भी चीज का वो गुण जो किसी भी हालत में कभी भी उससे पृथक ना किया जा सके, और उस गुण के अनुसार जो कार्य है उसे धर्म कर्तव्य कहते हैं, ऑक्यूपेशनल संवैधानिक कर्तव्य। तो इस दृष्टि से हम सभी जीव का, चाहे वो हिंदू के घर में जन्म लिया है, चाहे मुस्लिम के जन्म लिया है, चाहे पेड़ के रूप में, चाहे पक्षी के रूप में, हर सबका एक ही सनातन धर्म है, एक ही धर्म है, एक ही ऑक्यूपेशन है, एक ही कर्तव्य है, भगवान की सेवा। सेवा तो सब कर ही रहे हैं, सेवा करना ही एक धर्म है जो सब जीव कर रहे हैं। चाहे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, वो भी किसी ना किसी की सेवा कर रहा है, चाहे वो गरीब व्यक्ति है, कोई भी है, आप बता सकते हैं कोई उदाहरण जो किसी की सेवा नहीं कर रहा है? ऐसा कोई भी एक लिविंग एंटिटी है जो किसी की सेवा नहीं कर रहा है? कोई भी नहीं, सब सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करना वो हमारा स्वाभाविक धर्म है। पर समस्या क्या है? एट प्रेजेंट इस जेल के अंदर हमें जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए भगवान की जो पुलिस डिपार्टमेंट है माया शक्ति उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ रहे हैं। जब मृत्यु आती है यस जाना ही पड़ता है, नो कंट्रोल। तो इस भौतिक जगत में ये भौतिक जगत है। तो ये जो प्रकृति है, ये जो भौतिक जगत बनाई है, ये भगवान बोलते हैं ये मेरी प्रकृति है और ये मेरे संरक्षण में काम कर रही है। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। कई लोग ऐसे सोचते हैं ये इतना वंडरफुल मेटल वर्ड है, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, प्रकृति है, कितना वंडरफुली काम कर रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, ऐसा लगता है हमें। एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, सूर्य अपने आप घूम रहा है, सब कुछ अपने आप चल रहा है, तो इसलिए वो थ्योरी देते हैं कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, एवरीथिंग इज जस्ट ऑटोमेटिक। लेकिन इस ऑटोमेटिक मशीन के पीछे बैकग्राउंड में कौन है? वो सुप्रीम कंट्रोलर है। जैसे एक छोटा बच्चा है जिसने आज तक बैलगाड़ी देखी है, घोड़ा गाड़ी देखी है, देखा है कि जानवर ही गाड़ी खींचता है। जब पहली बार वो किसी मोटर कार को देखता है तो सोचता है अरे बिना घोड़े के गाड़ी चल रही है, ऑटोमेटिक अपने आप चल रही है, बिना घोड़े के चल रही है। लेकिन जो एक मैच्योर आदमी है उसे पता है कि इसके अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिज्म है जो एक व्यक्ति ने बनाया है, जीवित व्यक्ति ने, जिसलिए घोड़े की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर वो मैकेनिज्म एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ने बना दिया है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप से नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक साइंस है जिसकी वजह से चल रहा है। यानी इसके पीछे भी ये बनाने वाला है, मैकेनिज्म बनाने वाला भी एक व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि अपना आप हो रहा है। उसी प्रकार से एक साधारण समस्या दिखता है कि सब चीज अपना चल रही है, लेकिन जो व्यक्ति मैच्योर है, जो शास्त्र के अनुसार जानता है, वो समझ सकता है कि इस होल बैकग्राउंड के पीछे, इस पूरी प्रकृति के पीछे एक अल्टीमेट सुप्रीम कंट्रोलर है जो सब कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, नियम बना रहा है। तो इस तरीके से ईश्वर, उनकी शक्तियां, जड़ा जड़ बहिरंगा जो प्रकृति जो अष्ट धातु की बनी है, और फिर जीव, ये सब मिलाकर के पूरी एग्जिस्टेंस है, और इस सब को मिलाकर के कहते हैं परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ किस चीज का बना है? शक्तिमान और शक्तियों का बना है। तो शास्त्रों के अनुसार हम देखें मत तो जो परम शक्तिमान है, जिनकी वो सब शक्तियां हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण कहा गया है। उनकी अलग अलग शक्तियां हैं ये। जैसे हम कृष्ण कहते हैं तो वो कोई एक सांप्रदायिक विचारधारा नहीं है, एक सेक्टेरियन वो नहीं है कि एक सेक्टेरियन है, ये कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हम इसको मानते हैं, हम इसको मानते हैं। कृष्ण का मतलब है आनंद का स्रोत, सर्व आकर्षक, यह है मतलब कृष्ण का। तो परम सत्य भगवान जो है वो, उनका एक और महत्वपूर्ण गुण है, वो आनंद के स्रोत हैं। ही इज सोर्स ऑफ प्लेजर। हम जो जीव हैं उनके अंदर भी भगवान के अंश होने के कारण ये आनंद का कण है, आनंद, आनंदित रहने की इच्छा है। हर व्यक्ति, पूरा जगत किस लिए काम कर रहा है, सब लोग किस लिए मेहनत कर रहे हैं, टू बी हैप्पी, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि ये जीव का स्वाभाविक गुण है कि हम सब सुखी रहना चाहते हैं। क्यों हमारे अंदर ये गुण है? क्योंकि भगवान का ये गुण है, ही इज ऑलवेज हैप्पी, ही इज फुल ऑफ प्लेजर, ही इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो जब हम जीव भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, तब हम उस आनंद के स्रोत के साथ जब जुड़ जाते हैं, देन वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अनलिमिटेड प्लेजर। तो इसलिए भगवान या कृष्ण नाम जो भगवान का दिया गया है, भगवान के अनेक अनेक नाम उनके गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो कृष्ण नाम जो है वो किसी, ऐसा नहीं कि वो किसी एक मान्यता का नाम है। कृष्ण भगवान का सबसे सटीक नाम, भगवान के जो सभी गुणों को बेस्ट पॉसिबल डिस्क्राइब करता है, वो नाम है कृष्ण। क्योंकि भगवान का आनंद के स्रोत है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है और सर्व आकर्षक है। तो जो भगवान शब्द है उसकी डेफिनेशन क्या है? पराशर मुनि व्यासदेव जी के जो पिता हैं, उन्होंने डेफिनेशन दिया है गॉड, भगवान, भगवान की डेफिनेशन क्या है? भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब उनको धारण करने वाले, भगवान मतलब जो सभी ऐश्वर्य से पूर्ण है, जिनको विभाजित किया गया है छह कैटेगरीज में। कौन कौन सी हैं? रिचेस, संपत्ति, रिचेस, दूसरा है नॉलेज, ज्ञान, ब्यूटी, सौंदर्य, स्ट्रेंथ, शक्ति, एफ फेम, प्रसिद्धि, यश, और रिनंसिएशन, त्याग। ये छह ऐश्वर्यों से पूर्ण, कंप्लीटली, परफेक्टली जो व्यक्ति है उसे कहते हैं भगवान। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो एक ही समय में सबसे अधिक रिच, सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक ज्ञानवान, सबसे अधिक त्यागी, सभी के सभी छह ऐश्वर्य जिसमें पूर्ण रूप से एक ही समय में प्राप्त होते हैं, वो डेफिनेशन है भगवान की। ही इज कॉल्ड भगवान। तो हम भौतिक जगत में बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, किसी के पास बिल गेट्स का बहुत पैसा है, पर वो ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि सब पैसा उसी का है। वो सबसे पैसे वाला है पर सब पैसा उसका नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, भगवान मतलब सभी ऐश्वर्य उनका है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, दैट इज भगवान। हम बहुत ही जगह में देखते हैं, फिर दूसरा, किसी एक व्यक्ति के पास एक चीज हो सकती है पर जरूरी दूसरी हो, किसी व्यक्ति कोई बहुत अमीर है पर जरूरी नहीं कि वो बहुत सुंदर हो, कोई बहुत शक्तिशाली है पर जरूरी नहीं कि वो त्यागी हो, रिनंसिएट नहीं हो। तो भगवान जिनके पास एक ही समय में ये सभी के सभी छह ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध हैं, वो है भगवान। ये डेफिनेशन है भगवान की। तो यदि हम किसी भी व्यक्ति को भगवान कहना चाहें, तो हमें जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, ईश्वर के गुण, ईश्वर कौन है और भगवान की डेफिनेशन, हमें मैच करना पड़ेगा। कौन वो पर्सन है जो इन सब क्वालिटीज को मैच करता है, तब हम बता सकते हैं कि यस, इसलिए हम इसको भगवान स्वीकार करते हैं। तो आजकल बहुत सारे, हर दिन नए भगवान निकलते हैं, हर शहर में एक एक भगवान है, मार्केट है बड़ा, सुपर मार्केट भगवान का। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि केवल अपने को मात्र भगवान कहने से काम नहीं चलेगा। जो भी आप कह रहे हैं भगवान, तो आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि आप इन क्वालिटीज को प्रदर्शित करते हैं, ये सब गुण आपके अंदर हैं, ये सब क्वालिफिकेशन है आपके अंदर, तब आप कह सकते हैं कि आप भगवान हैं। कोई व्यक्ति बोले कि हम भगवान हैं, तो क्या आप कंट्रोल कर रहे हैं हवा और ये पानी और सूरज आपके कंट्रोल में है? खुद बूढ़ा हो रहे हैं, खुद बाल सफेद हो रहे हैं, दांत टूट रहे हैं। अगर आप अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बूढ़ा हो रहे हैं, आप सुप्रीम कंट्रोलर कैसे हैं? आपके ऊपर एक कंट्रोल करने वाला है ना, तभी तो बूढ़े हो रहे हैं, नहीं तो बूढ़े क्यों हो रहे हैं? अगर हार्ट अटैक हुआ तो डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो आप सुप्रीम कंट्रोलर कैसे हुए? जब आपका डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है तो आप कंट्रोलर कैसे हुए? सुप्रीम कंट्रोलर आप अपने हार्ट अटैक हो गया आपको और कैसे सुप्रीम कंट्रोलर मान सकते हैं? दांत में दर्द हुआ तो दुखने की वजह से डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, दैट मींस ही इज नॉट कंट्रोलर, ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल, ही इज नॉट सुप्रीम कंट्रोल डेफिनेटली। तो भगवान किसी को ऐसे नहीं मान सकते हैं। भगवान जो शास्त्रों के अनुसार अवतरित होते हैं, क्यों अवतरित होते हैं भगवान आध्यात्मिक जगत से? क्योंकि भगवान हम सबके पिता हैं। अहम बीज प्रद पिता, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवद्गीता में, सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्ते संभवन्ति याः तासाम महद ब्रह्म योनिर अहम बीज प्रदम प्रदा पिता। ये सभी जो योनियां हैं 84 लाख योनियां, उन सभी का जो बीज है, उन सभी का जो ओरिजिन है वो मैं हूं। तो पिता हमेशा चाहता है कि उसके पुत्र सुख में रहे। तो जैसा हमने देखा कि भगवान से विद्रोह करने के कारण, भगवान की सेवा न करने के कारण हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ा, भौतिक प्रकृति कंट्रोल में आना पड़ा। तो भगवान परम पिता होने के कारण हमेशा से चाहते हैं कि हम वापस अपने घर भगवत धाम वापस लौटें। तो भगवान इसी उद्देश्य से आते हैं हमें वापस बुलाने के लिए। शास्त्र छोड़ जाते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, किस लिए? वापस बुलाने के लिए। तो हम यहां बैठ करके कल्पनाएं करते रहे, भगवान ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, शायद निराकार होगा, शायद साकार होगा, शायद ये होगा वो होगा। स्पेकुलेट मत करो, आई एम कमिंग, मैं खुद आ रहा हूं, देख लेना कैसा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं। तो भगवान जब अवतरित होते हैं पूर्ण रूप में, कंप्लीट फुल एनर्जी के साथ, पूर्ण पुरुषोत्तम, जब वो प्रकट होते हैं तो अपनी सभी जो आध्यात्मिक जगत में वो कर रहे हैं वो सब लीलाओं के साथ, सभी पार्षदों के साथ आते हैं, पूरा सैंपल प्रोड्यूस करने के लिए कि दिस इज व्हाट आई एम, ये सब मेरे पार्षद हैं और ये मेरी एक्टिविटीज हैं, जो बहुत मधुर हैं, एक्टिविटी बहुत मधुर है, जिससे हम आकर्षित हो सकें और पुनः अपने घर वापस लौट सकें। ये प्रयोजन के साथ भगवान अवतरित होते हैं। तो हम यदि देखें, भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व जब अवतरित हुए, ये सभी जो हमने अभी तक की क्वालिटीज दिखी हैं, अगर कोई व्यक्ति इन सभी क्वालिटीज को फुलफिल करता है तो हम वो श्री कृष्ण के कैरेक्टर में, इंडिविजुअलिटी में देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें ऑल रिचेस। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर थे 5000 वर्ष को, तो 16000 उनकी रानियां थीं, और 16000 रानियों के लिए 16000 महल थे, और हर महल पूरी तरह से डायमंड्स और कॉस्टली जेवल्स का ही बना था पूरा। आज तक की हिस्ट्री में कोई ऐसा है 16000 महल पूरी तरह से हीरो से बने हुए? इज देर एनीवन इन द हिस्ट्री सो फार, एनीवन नोन हु कैन कंपेयर द रिचेस ऑफ कृष्णा? शास्त्रों के अंदर हम वर्णन पढ़े भगवान श्री कृष्ण का, लक्ष्मी जी जो है वो ऐश्वर्यों की सभी उनकी सेवा करते हैं, लक्ष्मी थोड़ा सा पैसा दी लक्ष्मी जी, लेकिन शास्त्र में वर्णन है ब्रह्म संहिता में, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम, हजारों हजारों लाखों लाखों लक्ष्मियां वैकुंठ जगत में भगवान की सेवा कर रही हैं, जिनकी थोड़ी सी कृपा मिलने से हम अमीर हो जाते हैं, ऐसी हजारों हजारों लक्ष्मियां तो भगवान की सेवा कर रही हैं। देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ लॉर्ड्स रिचेस। अहम सर्वस्य प्रभवः, भगवान बताते हैं एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम मी, सुप्रीम प्रोप्राइटर है वो। तो वो है मापदंड, ऑल रिचेस एवरीथिंग, कृष्णा ओनली कैन क्लेम दैट ही इज प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग व्हाटएवर दैट एग्जिस्ट। और हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं, हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं आ सकता जो उनके रिचेस के समान आ सके। नॉलेज, भगवान श्री कृष्ण ने यह भगवद गीता दिया है एज ए पीस ऑफ नॉलेज। इज देयर एनी बुक एट प्रेजेंट विच कैन कंपेयर दिस पीस ऑफ नॉलेज? कोई भी और दूसरा ले आइए पीस ऑफ नॉलेज, कोई भी फिलोसफर को ले आइए, कोई भी ज्ञानी, कोई भी साइंटिस्ट को ले आइए, 5000 ईयर्स तो इसी कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री में एज है, 5000 ईयर्स बैक बोला गया। बहुत सारी बुक आती हैं, हिट करती हैं मार्केट को टॉप 10 में, कितने समय तक रहती हैं? 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, उसके बाद नेक्स्ट बुक आती है, कंपटीशन और आगे चली जाती है। पर आज तक ऐसी कोई बुक नहीं है जो इतने लंबे समय तक आज भी उतनी ही मात्रा से श्रद्धा से लोगों के द्वारा, सभी प्रकार के लोगों के द्वारा, बड़े बड़े स्कॉलर्स के द्वारा सम्मानित है जितनी भगवद गीता। बड़े से बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस इत्यादि भी दे गिव रिस्पेक्ट कि दिस पीस ऑफ नॉलेज इज समथिंग वेरी वंडरफुल नॉलेज। और ऐसी नॉलेज जो चेंज नहीं हो रही है, देयर इज इट्स नो नीड टू चेंज, बल्कि हर चीज सही है, सिद्ध हो रही है। कोई कंपैरिजन इस नॉलेज का? देयर इज नो कंपैरिजन। फिर हम देखें, जैसे हमने वो श्लोक बोला आपसे भगवद गीता का, भगवान बोलते हैं करोड़ों करोड़ साल पहले विवस्वान को मैंने ज्ञान दिया। भगवान को याद है? इज देयर एनी पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो याद कर सके अपने करोड़ जन्म पहले का? हमको कल क्या खाया वो याद नहीं रहता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं भविष्य में क्या होगा। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। पास्ट में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या हो रहा है, और फ्यूचर में क्या होगा, आई नो एवरीथिंग एंड आई नो ऑल द लिविंग एंटिटीज, मैं सब जीव को जानता हूं, लेकिन माम तु वेदन कश्चन बट नोबडी नोज मी, हु कैन कंपेयर कृष्णा, ही इज नोअर ऑफ ऑल द थिंग्स। जब देवता जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से पहले ब्रह्मा जी को लेकर के क्षीर सागर पर, प्रार्थना करते हैं कि अभी इतना अराजकता बढ़ गई है, संकट, पृथ्वी, भूदेवी जाती हैं, ये भागवत में सब वर्णन है कि डेमन्स, राक्षस लोग की संख्या बहुत बढ़ गई है जिसकी वजह से बहुत परेशानी है, तो आप कृपया आइए। तो वहाँ पर महाविष्णु ब्रह्मा जी को संदेश देते हैं, यस लॉर्ड कृष्ण इज ऑलरेडी कमिंग, ऑलरेडी दैट नॉलेज इज देयर, ही इज कमिंग नाउ, ही नोज एवरीथिंग, क्या हो रहा है सब जगत में, क्या हो रहा है, ऑलरेडी नोज नॉलेज। ब्यूटी, सौंदर्य, कौन है जो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के आगे आ सके? यहां हम सौंदर्य देखते हैं जो कि एक प्रजाति में ही रहता है, मनुष्य जाति में मनुष्यों के आपस में ही सौंदर्य का संबंध होता है, वही आकर्षित करते हैं। एक बहुत सुंदर पक्षी या एक बहुत सुंदर कुत्ता वो हमें आकर्षित नहीं करेगा, या एक कुत्ता जो है वो किसी एक बहुत मिस यूनिवर्स के प्रति आकर्षित नहीं होगा, तो वो इंडिविजुअल अलग अलग योनि में रहते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण थे वृंदावन के गाय, वृंदावन के पक्षी, वृंदावन के पेड़, यमुना नदी, सभी भगवान के प्रति आकर्षित थे। जब भगवान जाते थे तो उनको छूने के लिए वो सब झुक जाते थे, नदी जो है वो अपने तट छोड़ करके भागने लगती थी, ये सब विवरण शास्त्र के अंदर है। सभी पूरा वृंदावन चार सब समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कोई चिंता नहीं। जो गोपियां हैं वो ब्रह्मा जी से कंप्लेंट कर रहे हैं, ब्रह्मा जी आपको सृष्टि बनाई नहीं आती है, यू डोंट नो हाउ टू मेक बॉडीज, आपने गलत बनाया, आपने पलके बना दिए हैं जिससे कि हमें को बीच बीच में इंटरप्शन होता है, वी कैन नॉट सी कृष्ण कंटिन्यूअसली, हम भगवान को सतत नहीं देख पा रहे हैं, आपने पलक बना दी है हमारी, तुम्हें कुछ बनाने है, तुम्हें यार मूर्ख, फुलिश हो आप, यानी दे वर कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड अट्रैक्टेड। है कोई जो कृष्ण के समान ऐसा सौंदर्य वाला हो? देन स्ट्रेंथ, शक्ति, भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की उम्र में कन की उंगली के ऊपर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया फॉर 7 डेज, और ऐसा नहीं कि उठाने के बाद उनको बहुत थकावट हो रही थी, टायर्डनेस हो रही थी, पसीने छूट रहे थे, हैप्पीली कन की उंगली से हंसते हंसते। आज जो तथाकथित अपने को भगवान बोलते हैं, एक ईंट उठा करके दिखाएं एक घंटे के लिए, हम टेस्ट करेंगे आपका। भगवान बोलते हैं अपने को, ठीक है बोलो ये ईंट है इसको उठाइए एक घंटे के लिए, पता लग जाए कौन भगवान है। वो गोवर्धन पर्वत आज भी है 7 साल की उम्र में, और भगवान ने जो आजकल के तथाकथित योगी हैं, हो सकता है कोई योगिक शक्ति से कुछ हद तक कुछ कर सके, पर भगवान ने कोई योगा क्लास अटेंड नहीं किया। जन्म से 6 महीने के थे तब तो पूतना आ गई थी उनको मारने के लिए, बहुत बड़ी राक्षसनी थी, और उन्होंने बहुत सरलता से वो अपने स्तनों के ऊपर विष लगा के आई थी, और उन्होंने उसका दूध पिया और साथ साथ उसके प्राण भी ले लिए और उसको फिर मुक्ति प्रदान की। 6 महीने की उम्र में तो कोई योगा क्लास का प्रश्न ही नहीं उठता है योगा सीखने का। 6 महीने की उम्र में उन्होंने पूतना का वध किया, और ऐसे हम पूरे उनके जब वो थे तब देखें बड़े बड़े असुर आए और ऐसे जस्ट खेल खेल में, हर दिन का खेल था उनका, हर दिन जाते थे जंगल में, एक असुर आता था खेल खेल में मार देते थे। हु कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा। देन फेम, यश, भगवान के समान यश वाला कौन है जिनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक है। हमें विवरण मिलता है शास्त्रों में, देवताओं के लोकों में सदैव सभी देवगण भगवान का हमेशा से भागवतम के द्वारा कीर्तन करते रहते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। हमेशा से जो प्रसिद्ध श्लोकों में भक्तगणों के द्वारा गुणगान इनका होता रहता है। जब भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, विष्णु सहस्र नाम के द्वारा ग्लोरिफिकेशन करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, और हर एक एक नाम में सहस्र नाम में भगवान के एक एक दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं, इतने गुण है भगवान के अंदर, अनंत शेष, अनंत जिनके शेष हैं, थाउजेंड्स ऑफ हुड्स भगवान के एक अंश हैं, वो अपने इन अनलिमिटेड हुड से हर क्षण भगवान के गुणों का गुणगान कर रहे हैं, पर आज तक भी खत्म नहीं हुए गुणगान, देयर इज नो लिमिट, उनके यशों का कोई अंत ही नहीं है, देयर इज नो एंड टू हिज क्वालिटीज, होते जा रहा है, नो एंड। फिर एक प्रश्न उठ सकता है कि आप कह रहे हैं भगवान सबसे बड़े यशस्वी हैं, पर भौतिक जगत में तो सब नहीं जानते उनको, भगवान श्री कृष्ण को, ऐसा प्रश्न उठाया सकता है कि भौतिक जगत में कहां जानते हैं सब लोग कृष्ण को। तो भौतिक जगत तो पूरी सृष्टि में है कितना, जो हम देख रहे हैं आज ये पृथ्वी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो पूरी सृष्टि की हम कितनी की बात कर रहे हैं, बहुत एक छोटा सा पृथ्वी है, ऐसे ऐसे कितने सारे ग्रह हैं इस भौतिक जगत, इस ब्रह्मांड में, और ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं, और हम केवल यहां पर हमारी नॉलेज है केवल इसी प्लैनेट की, व्हाट अबाउट अदर प्लैनेट्स, स्वर्गलोक की जानकारी है, ब्रह्मलोक की जानकारी है, वहां क्या हो रहा है, वो विवरण शास्त्रों में, उनके कंपैरिजन में जो आप कंपैरिजन करो वो बहुत छोटा है। तो वहां के यश को देख करके हमें भगवान के यश का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। और मोर ओवर ये जो प्लेनेट है, ये जो भौतिक जगत है, ये तो केवल प्रिजन हाउस है। यदि एक जेल के अंदर जो कैदी है, यदि वो नहीं जानते कि प्राइम मिनिस्टर कौन है और उसका गुण कितने हैं, तो उससे प्राइम मिनिस्टर का गुण यश कम नहीं होता है, क्योंकि वो तो प्रिजनर है, दे आर प्रिजनर्स, उनके ना जानने से भगवान जो प्राइम मिनिस्टर है उसका यश कम नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत इस पूरी सृष्टि में जो भौतिक जगत है वो केवल 1/4 है पूरी सृष्टि का, ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड मिलाकर के, अलग अलग ब्रह्मांड मिलाकर के केवल 1/4 है, 3/4 तो आध्यात्मिक जगत है जहां केवल भगवान का ही जिक्र हो रहा है हर समय हर क्षण हर व्यक्ति के द्वारा, इसलिए सबसे यशस्वी। और 6 रिनंसिएट, त्यागी। इस भौतिक जगत में देखते हैं जब भी किसी व्यक्ति के पास शक्ति आती है, पैसा आता है, तो वो घमंडी आता है, और लेकिन भगवान इतने सभी यशों से पूर्ण है जो हमने देखा अभी, फिर भी भगवान अत्यंत विनम्र है। भगवान सभी को चला रहे हैं, सभी के नियंता हैं, फिर भी भगवान अपने भक्तों के प्रेम में आकर के उनके दास बनने को स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन के भगवान पार्थसारथी बन जाते हैं, पार्थसारथी मीन्स वेरी मीनियल जॉब, मीनियल कार्य, किसी का रथ खींचना बहुत एक साधारण कार्य है। ऐसे भगवान जो सबके नियंता है, वो भगवान एक साधारण एक शॉफर बन जाते हैं, घमंडी नहीं। फिर जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, राष्ट्रीय यज्ञ में सभी जगह से सभी लोग एकत्रित हो रहे थे, राजा इत्यादि, तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी, युधिष्ठिर महाराज को जिम्मेदारी दी, दुर्योधन को दी, गेस्ट रिसीव करना है, किसी को अरेंजमेंट करना है, ऐसे अलग अलग। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं क्या जिम्मेदारी ली? सबके चरण धोना। क्योंकि जो वास्तव में महान है उसे चिंता नहीं होती है, वो किसी उसको कोई भी कार्य करने से वो छोटा नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि परमानेंटली वो हाई पोजिशन में है, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं। सो वो सुप्रीम रूप से रिनंसिएट है, त्यागी है। तो इस दृष्टि से हम यदि देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद आकर के यहां प्रूव किया कि भगवान के जो सभी गुण हैं वो उनके अंदर है, और भगवद गीता के माध्यम से वो स्पष्ट कर रहे हैं अहम बीज प्रदपिता। यदि हम अभी शास्त्रों को देखें तो हम कृष्ण को जो भगवान मान रहे हैं वो केवल हमारी एक मानसिकता, हमारी एक विचारधारा नहीं है, सभी शास्त्रों का निचोड़ है। जो भी हमने गुण देखे शास्त्रों में बताया गया है, जो भी हमने देखे, परमेश्वर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परमेश्वर कृष्ण है। ये हमारी इस्कॉन की बात नहीं है या किसी एक मान्यता की बात नहीं है, ये शास्त्रों का विधान है, शास्त्रों का निचोड़ है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। फिर भगवान सभी अवतार जो आते हैं अलग अलग, उन सब के अवतारी हैं, मूल हैं उनके। भागवतम में आप पढ़िए, एत चांस कला पुंसाम कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। ये सभी जो अवतार हैं वर्णन किया गया है सभी अवतारों का भागवतम के द्वितीय स्कंद में, और भगवान उसके अंतिम श्लोक में लिखते हैं ये सभी अवतार जो हैं ये भगवान की परम सत्य के अंश या अंश के अंश हैं, लेकिन कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, पर कृष्ण वो स्वयं साक्षात भगवान है। तो फिर कई बार ये प्रश्न उठता है, विष्णु अवतारी हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं या विष्णु कृष्ण के अवतार हैं? साउथ इंडियन में स्पेशली ये प्रश्न जरूर उठेगा, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं या विष्णु कृष्ण के अवतार हैं? तो भगवान विष्णु हैं, भगवान श्री कृष्ण के वो रूप जो महाविष्णु के रूप में इस भौतिक प्रपंच का प्रारंभ करते हैं। तो इस दृष्टि से हम हमारे लिए इस भौतिक जगत में महाविष्णु ही बड़े हैं, पर अल्टीमेट सेंस में कृष्ण इज द सुप्रीम अथॉरिटी। जैसे एक मालिक है बहुत बड़ा, उसकी कंपनियां हैं अलग अलग, एक स्विट्जरलैंड में कंपनी है, एक इंडिया में है उसकी ब्रांच, एक यहां है वहां है, तो वो हर जगह नहीं आता, उसे हमने मैनेजर छोड़ रखे हैं, मैनेजर्स वो सब काम करते हैं, वो अपना कहीं आराम करता है, रेस्ट करता है। तो कभी कभी जो जाता है चाहता है, ठीक है आज मैं जाता हूं अपनी इंडियन फैक्ट्री में देखता हूं क्या होता है, तो फोन करता है मैनेजर को, आई एम कमिंग। तो मैनेजर एड्रेस में पहुंच जाता है लेने के लिए, यस सर कार। तो जो एम्प्लॉयज इंडिया में उसकी उस ब्रांच में काम कर रहे हैं उन्होंने तो आज तक देखा नहीं उस सुप्रीम अथॉरिटी को, उनका संपर्क तो केवल वो मैनेजर से हुआ है, तो उनके लिए तो वही सुप्रीम है वहां। और जब वो सुप्रीम पर्सन उस मैनेजर की कार में आता है तो सोचते हैं ओ हमारा मैनेजर तो है ही, वो उसको लेके आ रहा है, यानी वो उसके बाद में आया है, यानी कि वो उसके थ्रू आया है, यानी कि वो उसके नीचे है। लेकिन रियलिटी क्या है? वो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो सुप्रीम प्रोप्राइटर है सबका, वो मैनेजर के माध्यम से आ रहा है। तो इस दृष्टि से हम यदि शास्त्रों के गहराई में जाएं, ब्रह्म संहिता स्पष्ट बताती है विष्णु, भगवान विष्णु वो इस भौतिक जगत के प्रपंच की सृष्टि के लिए भगवान का वो रूप है जो इस सृष्टि की प्रपंच की सृष्टि के लिए निर्भर है। तो हमने जैसे पॉइंट डिस्कस किया सुप्रीम एंजॉयर, एक ही बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, भगवान को समझना है कि भगवान कौन हो सकता है, सुप्रीम एंजॉयर। एंजॉयर कौन होता है? जिसे कोई काम ना करना पड़े, केवल एंजॉय करना पड़े, उसे हम कह सकते हैं सुप्रीम एंजॉयर। इस भौतिक जगत में हमें कोई भी एंजॉय करने के लिए पहले कुछ मेहनत करनी पड़ती है, पहले पैसा कमाएंगे तब टीवी आएगा, तब घर आएगा, तब बंगला आएगा। पर सुप्रीम एंजॉय मीन्स जिसे कोई काम नहीं करना पड़े, जिसका एक ही एक काम है हाउ टू एंजॉय। इसलिए शास्त्र में बताया गया है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान की डेफिनेशन, भगवान कौन? जिसके लिए कोई कार्य नहीं है, देयर इज नो वर्क टू बी डन बाय हिम, देयर इज नो, उसके लिए कोई बर्डन नहीं है, उसका कोई कर्तव्य नहीं है, भगवान को यह करना है, मेरी ड्यूटी है, देयर इज नो ड्यूटी फॉर हिम। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, और जिसका कोई कॉज नहीं है, जिसके ऊपर कोई कॉज नहीं है, जिसका कोई बनाने वाला या कोई नहीं है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समश च अभ्याधिकश्च विद्यते, जिसके समान या उससे ऊपर और कोई नहीं है। तो फिर वो कैसे काम करते हैं सब, भगवान सृष्टि का सहन कैसे करते हैं फिर, यदि इनका कोई काम नहीं है तो? आप बोल रहे हैं भगवान कोई काम नहीं है, पर सृष्टि का सहन फिर करना पड़ता है ना उनको। भगवान बताते हैं मैं कैसे करता हूं, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ये जो मेरी सब काम हो रहे हैं भौतिक जगत की सृष्टि, ये तो केवल मेरी शक्ति से, मात्र भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। जस्ट इच्छा करते हैं सब जाते हैं। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े, कोई बहुत बड़ा मालिक है, टाटा बिरला है, तो वो केवल ऑर्डर करता है ये कर दो, और उसके अंडर में जो सब लोग हैं इमीडिएटली, जैसे अभी निगम साहब हैं, वो बोले ये ठीक अरेंजमेंट हो जाता है सब, उनको खुद हर चीज नहीं करनी पड़ती, उनके अंडर में जो है वो सब कर देते हैं। तो अब सोचिए जो सुप्रीम कंट्रोलर है वो केवल इच्छा करता है, बोलता भी नहीं है, निगम साहब को एटलीस्ट बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और कुछ ही ऐसी हो सकती है जो उनके कंट्रोल में नहीं हो, जो उनके वश में ना हो, लेकिन भगवान इच्छा करते हैं और परफेक्टली हर चीज उनकी शक्तियों के द्वारा एट वंस हो जाती है। भगवान इच्छा करते हैं और सृजन हो जाता है कंप्लीटली परफेक्टली। हम क्रिश्चियनिटी में या देखते हैं वेस्टर्न फिलोसफी में एटलस दिखाते हैं, एटलस ओल्ड मैन एक पृथ्वी को धारण किए हुए है, बहुत थका हुआ है, जैसे कि भगवान धारण करते के थक गए हैं, लेकिन वो कंसेप्शन वैदिक कंसेप्शन नहीं है। वैदिक कंसेप्शन में भगवान ऐसा नहीं, सृजन करने भगवान को बहुत बर्डन है, कितना मैनेजमेंट करना पड़ता है भौतिक जगत में। आप देखिए, आप जो छोटे छोटे मैनेजर हैं, हम लोग एक छोटी सी कंपनी को मैनेज करने में कितना बुद्धि कितना परिश्रम करना पड़ता है, आप सोचिए इस पूरे जगत को मैनेज करना कितना बड़ा काम है। हर व्यक्ति का जन्म कहाँ होना है, किसको कौन शरीर मिलना है, किसने क्या कर्म किए हैं, इट्स ए इम्पॉसिबल टास्क। पर भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो मैं कार्य करता हूं जस्ट विलिंग, उनको कोई इससे हेडेक नहीं होता, कोई बर्डन नहीं होता है, वो खुद इसमें पार्टिसिपेट करते भी नहीं है एक्चुअली, बहुत ही जगत के कार्य में वो खुद पर्सनली इंटरफेयर करते ही नहीं है, वो तो आध्यात्मिक जगत में बांसुरी बजा करके एंजॉय करते हैं। एक बार एक जर्मन आदमी आया, इंटेलिजेंट आदमी था, वो इंडिया में आया देखने के लिए कि मैं देखना चाहता हूं कि ये भगवान कौन है यहां। तो अलग अलग मंदिरों में गया, शिव जी दुर्गा जी गणेश जी सभी के मंदिर में गया, भगवान श्री कृष्ण। अंत में उसने निचोड़ निकाला, ये जो पर्सनैलिटी है यहां कृष्ण, ही कैन बी कॉल्ड एज गॉड, क्योंकि बाकी सभी जो मंदिरों में जो विग्रह थे वहां सबको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा था, किसी के हाथ में त्रिशूल है तो किसी के हाथ में तीर कमान है, किसी कुछ, हर सबको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा है, पर ये एक आदमी है बांसुरी बजा रहा है आराम से, ही इज ओनली एंजॉइंग एंड विद गोपीज, ओनली एंजॉइंग, सुप्रीम एंजॉयर, ही हैज नथिंग टू, ही हैज नो वरीज, ही हैज नो वर्क, That is the definition of God, supreme enjoyer, जिसको कोई ना कुछ काम नहीं करना पड़े, who only enjoys. Actually, हम जीव भी आनंद प्राप्त करने के लिए हैं, लेकिन our enjoyment lies in participating, cooperating in Lord's enjoyment. भगवान के enjoyment में सहायता करने में हमारा enjoyment है। हम भगवान की तरह supreme enjoyer नहीं हो सकते, independent enjoyer नहीं हो सकते, भगवान independent enjoyer हैं, उन्हें किसी के, वो किसी पर निर्भर नहीं है, इज इंडिपेंडेंट एंजॉयर, पर हम डिपेंडेंट एंजॉयर है, हमारा एंजॉयमेंट के लिए हम डिपेंडेंट हैं भगवान पे। तो ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान की डेफिनेशन क्या है, कंट्रोलर एंजॉयर ये सब, और जो कृष्ण है वो कोई सेक्टेरियन नहीं है। कृष्ण नाम क्या है, सर्व आकर्षक। तो जबकि व्यक्ति बहुत अमीर होता है तो आकर्षक हो जाता है, जब कोई बहुत सुंदर होता है तो आकर्षक हो जाता है, जब कोई बहुत शक्तिशाली तो आकर्षक हो जाता है, कोई बहुत बड़ा तपस्वी है तो आकर्षक हो जाता है। तो अगर कोई शब्द भगवान को एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर सके, बेस्ट डिस्क्राइब कर सके, तो वो नाम है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण मीन्स सर्व आकर्षक। तो क्योंकि भगवान के अंदर ये सभी गुण हैं, छह ईश्वर हैं, इसलिए वो सबसे अधिक आकर्षक हैं, सर्व आकर्षक हैं, इसलिए उनका जो कृष्ण नाम है दैट इज अ प्रिंसिपल नेम। उनके और भी नाम है, ईश्वर, अल्लाह, अल्लाह मीन्स ईश्वर अगेन, ऑलमाइटी, ये भी सब उन्हीं को इंडिकेट करते हैं, एक ही भगवान को इंडिकेट करते हैं, उसी को ही, पर वो उसको उसके एक गुण को इंडिकेट करते हैं, कंट्रोलर पार्ट को, लेकिन कृष्ण के अंदर सभी क्वालिटीज कंबाइंड आ गई, दैट इज द नेम कृष्ण, इट्स नॉट अ सेक्टर नेम। तो इस दृष्टि से हम समझें कि ईश्वर क्या है। तो ये हमने आज देखा ईश्वर की परिभाषा, कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर, जीव और भगवान में अंतर, प्रकृति क्या है, कैसे हम ये भौतिक प्रकृति में आए हैं, और भगवान के अलग अलग गुण, छह ईश्वर कैसे हैं, और कौन, क्यों हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार कर रहे हैं सभी शास्त्रों के आधार पर, उन सब का प्रमाण हमारे पास है, आप चाहें तो डिटेल में हर एक ब्रह्म संहिता कौन कौन शास्त्र में, गोपाल तपानी अपने सभी का कैसे कैसे हम मानते हैं, ये कोई अंधविश्वास है, हमारी अपनी धारणा नहीं है, सभी शास्त्रों का मत है, सभी अथॉरिटीज का मत है, जितने भी शास्त्रों के अंदर अथॉरिटीज हुई हैं, और प्रैक्टिकली भी हम यदि डेफिनेशन से टैली करें सो वी कैन फाइंड आउट। इस बेस पे श्री कृष्ण जो अवतरित हुए यहां पर, जो हमेशा से गोलोक धाम में रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो उस समय ही आए, उससे पहले नहीं थे, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूता, जो हमेशा से गोलोक में रहती हैं परमानेंटली इटर्नली, ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान का जन्म बताया गया है। भगवान बताते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये सब दिव्य है मेरे जन्म कर्म, डोंट थिंक लाइक आपकी तरह से मेरा जन्म होता है। भगवान का जन्म कैसा है, सूरज के आने और जाने की जगह, जब सूरज उगता है तो ऐसा मतलब नहीं कि सूरज अभी जन्म हुआ है, या जब सब सूरज छुपता है तो ऐसा नहीं कि सूरज मर गया, वो हमारी आंखों से अंतर्धान हो गया। उसी प्रकार से भगवान का अवतरित होना और चले जाना वो हमारी आंखों के सामने से प्रकट और अप्रकट होना है, बाकी भगवान नित्य रूप से हमेशा से रहते हैं। तो ये सिद्धांत हमने आज देखा, यहां समाप्त करते हैं आज का क्लास। कल हम लोग कल मीन्स परसों सॉरी फोर्थ को फ्राइडे को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आत्मा के विषय में, हम कौन हैं, और डिटेल में हम लोग जाएंगे आत्मा के गुण क्या क्या हैं और कैसे हम लोग भगवान से अलग हो पाए हैं, कैसे हो गए हैं अलग, कैसे, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। हरे कृष्ण। नाउ एनी क्वेश्चंस इन दिस रिगार्ड? हाँ, इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट मेरा रह गया जो थोड़ा आपका, यदि आपके पास समय हो तो मैं ले सकता हूँ 5-10 मिनट हो। तो इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, एक तो देवी देवता कौन है, डेमीगॉड्स, तो भगवान और देवी देवता, तो देवी देवता हैं इस भौतिक जगत के संचालन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स जो भगवान नियोजित करते हैं वो डेमीगॉड्स हैं, देवता गण है, वरुण चंद्र सूर्य, जो इस भौतिक जगत में अलग अलग मेटल मैनेजमेंट करने के लिए, एक प्राइम मिनिस्टर है और उनके अंडर में अलग अलग मिनिस्टर्स हैं और उन सबके अपने अपने अलग अलग ऑफिस हैं, जैसे एक रक्षा मंत्री का एक अलग ऑफिस होता है, ऐसे उनके अपने अपने अलग अलग ग्रह हैं जिन्हें स्वर्ग लोग कहा जाता है, पर वो सभी इस भौतिक जगत के अंदर है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है, और भौतिक जगत में होने की वजह से उन सबका प्रलय होने पर नाश होता है, क्योंकि भौतिक जगत का बार बार प्रलय होता है, बार बार सजन होता है, इसलिए वो परमानेंट अबोर्ड नहीं है। इसलिए भगवदगीता के अंदर सेवा जो करने की बताई गई है, क्योंकि वास्तव में हमारे एकमात्र स्वामी परम स्वामी भगवान है श्री कृष्ण, उन्हीं की सेवा करने की बताई गई है। जो देवी देवता है वो स्वयं भी भगवान के सेवक हैं, आप पढ़िए शास्त्र में ब्रह्म संहिता सभी बताया गया है कि जो दुर्गा जी हैं वो भगवान के आदेश के अनुसार इस भौतिक जगत का सृजन और ये मैनेजमेंट करती हैं, वो सब स्वयं भगवान के सब सेवक हैं। तो इसलिए भगवान तो ये चाहते हैं, बेस्ट जो हमारी नेचुरल पोजीशन है वो है भगवान की सेवा करना। तो एक थोड़ा सा एक हिंट हमने आपको इसमें दिया और इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, थोड़ा टाइम मिलेगा तो बाद में आने वाले क्लासेस में। एक ये एक बहुत सुंदर चार्ट है जिसमें पूरे इस मेटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को पिक्टोरली डिस्क्राइब किया है। सो इफ यू कैन कम लिटिल, आप थोड़ा सा अगर आगे आ सकें, कैन यू होल्ड इट लाइक दैट, तो ये इस पूरी सृष्टि का एक छोटा सा भाग सेक्शन लिया है, कट सेक्शन इस पूरी सृष्टि को, उसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये है मेटीरियल क्रिएशन, ये पूरी नीचे की जो मेटीरियल क्रिएशन, इसके अंदर ये है मान लीजिए हमारा यूनिवर्स जिसमें हम अभी हैं, दिस इज वन यूनिवर्स, और ऐसे ऐसे सैकड़ों करोड़ों ब्रह्मांड इस पूरी भौतिक सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। इस एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक का सही एक जो हर ब्रह्मांड है वो नीचे एक समुद्र से भरा है जिसे गर्भोदक समुद्र कहते हैं, जिसके ऊपर अनंत शेष के ऊपर गर्भोदक का सही विष्णु शयन करते हैं, उनकी नाभि से एक कमल निकलता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी वास करते हैं, ये ब्रह्मा जी का अबोर्ड है ब्रह्मलोक, जो इस भौतिक जगत का सर्वोच्चम लोक है। ऐसे 14 लोक हैं, 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, सबसे नीचे पाताल है और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक या सत्यलोक है, और हमारी अर्थ है भूलोक, ये हमारी अर्थ छोटी सी इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग प्लैनेट्स, और ये सभी देवी देवताओं के धाम है, ऊपर स्वर्ग लोक जिन्हें बोलते हैं, उसके नीचे महर लोक तपर लोक, ऐसे 7 प्लैनेट सिस्टम्स हैं। ये इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा जी ये सभी और ये दुर्गा देवी जो इस भौतिक जगत में जो संचालन को दुर्गा ये फोर्ट की जो मालकिन है, जो फोर्ट की जो प्रिजन हाउस है दुर्गा दुर्ग जो दुर्ग की जो कंट्रोलरिंग है वो ये है, और उनके हाथ में त्रिशूल है दंड देने के लिए, जो भी यहाँ पर जीव हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए वो दंड है। तो ये है महाविष्णु जो जिनके रोम रोम से एक एक यूनिवर्स निकलते हैं, जब वो श्वास बाहर निकालते हैं तब यूनिवर्स निकलते हैं, और जब वो श्वास लेते हैं तो ये सब यूनिवर्स अंदर चले जाते हैं। यानी एक यूनिवर्स की, यानी एक ब्रह्मा जी की आयु एक यूनिवर्स के बराबर, एक ब्रह्मा जी की आयु बराबर उनके एक श्वास। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है आप ऐसे बता नहीं सकती कैलकुलेशन, क्योंकि इतनी बड़ी है वो इतनी बड़ी है कि हम केवल 12 घंटे की बात करेंगे, पूरी आयु को नहीं करेंगे। तो उनकी 12 घंटा के अंदर सहस्र युग होते हैं, 1000 साइकिल्स ऑफ कलयुग द्वापर त्रेता एंड सतयुग, ऐसी 1000 साइकिल मिला करके ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। कलयुग की अवधि है 400,000 साल, द्वापर की है उससे डबल, त्रेता की है उससे ट्रिपल, और सतयुग की है उससे 4 times। यानी कलयुग इंटू 10 times इज इक्वल टू 1 cycle। ऐसी 1000 cycle मिलाएं दैट इज इक्वल टू 12 hours ऑफ ब्रह्मा। ऐसे ही 12 घंटे की रात, और ऐसे ही एक दिन के 30 दिन मिला करके उनका एक महीना, और ऐसे 12 महीने मिला करके एक साल, और ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड। और वो सब जो आयु है वो केवल महाविष्णु की एक श्वास। ये महाविष्णु कौन है? केवल भौतिक सृष्टि का सृजन करने के लिए भगवान का जो रूप है वो महाविष्णु है। फिर जब वो यही एक्सपेंड करके एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग अनंत शेष के ऊपर जाते हैं, तो उन्हीं का ये नेक्स्ट इंकार्नेशन है गर्भोदकसाई विष्णु, महाविष्णु गर्भोदकसाई विष्णु। फिर यही गर्भोदक, यही विष्णु आगे इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव बनेंगे, जितने भी शरीर मिलेगा, उन सब आत्माओं के साथ जो साथ में परमात्मा रूप में रहेंगे, उन्हें कहते हैं शिरोदकसाई विष्णु, थर्ड एक्सपेंशन ऑफ विष्णु। तो ऐसे 3 प्रकार के विष्णु है, महाविष्णु गर्भोदकसाई विष्णु, जो कि इस पूरे जगत में हर चीज को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड, ये भौतिक जगत का हुआ, इसके अलग है आध्यात्मिक जगत, जो भी इसके अलावा है वो सब है आध्यात्मिक जगत। जो इस, ये भौतिक जगत तो कैसा है, इस पूरे स्काई में थोड़ा सा एक बादल, एक पूरे आकाश में थोड़ा बादल हो जाए, वो है ये भौतिक जगत। यानी पूरा तो क्या है, आध्यात्मिक जगत है। वो आध्यात्मिक जगत पूरा प्रकाशमान है ब्रह्म ज्योति से, वहां सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है। भौतिक जगत में अंधेरा है, क्लाउड है ये, क्योंकि यहां आवश्यकता है सूरज की। आध्यात्मिक जगत में भगवान के शरीर से निकलने वाला जो प्रकाश है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जिससे हर चीज प्रज्वलित रहती है। वहां कोई न तद भास्यते सूर्य न शशांको, भगवान बताते हैं वहां मेरे धाम में कोई सूरज कोई अग्नि इत्यादि की आवश्यकता नहीं है वहां पर। तो ये आध्यात्मिक जगत में जो सुप्रीम प्लेनेट है, हाइएस्ट प्लेनेट, वो है गोलोक धाम, भगवान बताते हैं भगवदगीता के अंदर। अक्षर अव्यक्त इति उक्त तम आहु परमाम गति यत प्राप्य न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वो अव्यक्त अक्षर, इनफेलिबल अव्यक्त, जो हमारे को मैनिफेस्ट नहीं है, ऐसा जो मेरा धाम है, जो परम गति है, जहां जाने के बाद दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता, दैट अबोड इज माइन, परम सुप्रीम अबोड, तो दैट इज गोलोक धाम कृष्णा। फिर यहां पर ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, जैसे मेटल वर्ल्ड में मेटल यूनिवर्सेस हैं, ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, जो अलग अलग वैकुंठ लोक हैं। इसमें से यहां है अयोध्या धाम, गोलोक के बाहर द्वारका धाम, मथुरा, द्वारका, अयोध्या, ये अलग अलग धाम हैं। यहां तो भगवान कृष्ण ही अपने रूप में रहते हैं। एक्चुअली जो कृष्ण है वो थोड़ी डीप फिलोसफी हो जाएगी, कृष्ण एक्चुअली जो ओरिजिनल है वो तो गोलोक में ही रहते हैं। एकम पदम न गच्छन्ति, एक पद छोड़ के ही बाहर नहीं जाते हैं। मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण है वो भी उनका एक एक्सपेंशन है, और द्वारका में वो भी एक उनका एक्सपेंशन है। स्वयं जो कृष्ण है ओरिजिनल, वो तो केवल गोलोक में ही रहते हैं। अयोध्या में भी वही भगवान का एक्सपेंशन श्री राम के रूप में अयोध्या में रहते हैं, और यही सब अवतार जब पृथ्वी पर आते हैं तो एज इट इज आते हैं, यहां पर भी रहते हैं साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं कि खाली आती जगह, लेकिन एक्सपेंशन करते हैं अपने, यहां आते हैं। ऐसे ही अलग अलग वैकुंठ लोक में अलग अलग एक एक विष्णु डेटीज, चार चतुर्भुजी, चतुर्भुज रूप में जो हम देखते हैं शंख चक्र गदा पद्मा, वो एक एक प्लैनेट के डेटी हैं, नरसिंह इत्यादि सभी, कूर्मा, ये सभी जो हैं इटर्नल फॉर्म्स हैं, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑलवेज एग्जिस्ट करती हैं। ये इस तरह से पूरा ये एक्सपेंशन होता है, और यहां बीच में आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में है कैलाश धाम, जहां शिव जी का वास है। शिव जी जो है ना तो जीव है ना तो विष्णु है, बीच में है। उनका उदाहरण दिया गया कैसे ब्रह्म संहिता में, जैसे दूध से दही बनती है, ऐसे ही भगवान विष्णु जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं तब उनका जो रूप है वो कहलाता है शिव रूप, शिव तत्व, शंभु तत्व। तो एक तरीके से दूध जो दही है वो दूध से ही बनी है, लेकिन उसका कार्य अलग अलग है। जो दही है वो दूध का कार्य नहीं कर सकती। दूध से दही बना सकते हैं, पर दही से आप दूध नहीं बना सकते। तो जो विष्णु तत्व है उनसे शिव जी का होता है। और शिव जी पार्वती जी, यहाँ पार्वती जी हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, अंतरंग शक्ति है श्रीमती राधा रानी, जैसे जैसे भगवान का एक्सपेंशन होता है यहाँ पर श्री राम के रूप में, तो श्रीमती राधा रानी का एक्सपेंशन सीता देवी, विष्णु जी का एक्सपेंशन तो लक्ष्मी जी, ऐसे ही शिव जी के रूप में आते हैं तो पार्वती जी। यानी एक तरफ शक्ति का एक्सपेंशन हो रहा है, एक तरफ शक्तिमान का एक्सपेंशन हो रहा है। तो इस तरह से ये एक्सपेंशन चल करके ये भौतिक जगत का संचालन के लिए शिव जी सृजन जो संहार करते हैं, और उसके अंडर में फिर ये सब आकी अन्य चीज़ें और ये सब देवता, ये सब स्थिति है। यहाँ पूरा डिटेल में विवरण है, बहुत अच्छा ये चार्ट है। तो इस तरह से हम थोड़ा समझ सकते हैं कैसे ये भौतिक सृष्टि सब चल रहा है। आई थिंक थोड़ा कुछ क्लियर हुआ होगा कुछ पॉइंट्स।
जो भगवान के साथ जन्म लेते हैं और उसकी टीम, जैसे कृष्ण के साथ सुदामा है,
हाँ जी,
राम जी के साथ ये हनुमान जी थे,
हाँ जी,
तो वो सब का कहाँ है?
वो सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इटर्नल हैं, वो नित्य पार्षद हैं भगवान के। जब जब भगवान आते हैं, भगवान के साथ वो साथ में रोल अदा करने के लिए, पार्ट टाइम्स के लिए उनके साथ में आते हैं। यस,
क्योंकि विष्णु के साथ, विष्णु राम जी है तो हनुमान जी उनकी सेवा करने के लिए शिव जी का रूप है वो।
yes.
और वो भी इसलिए क्योंकि उनका कोई पुराना उद्धार था, वो एक अलग स्टोरी है, उसको चुकता करने के लिए वो आए।
तो ये भगवान के 16,000 पटाणी में राधा जी, मतलब नाम
राधा जी की शक्ति
है। राधा रानी एक्चुअली अंतरंग शक्ति है भगवान की, अल्लादनी शक्ति, भगवान की वो शक्ति जो उनको आनंद प्रदान करती है, उनका नाम है श्रीमती राधा रानी। वो सबसे प्रमुख गोपियों में है। क्या प्रश्न है?
ये प्रश्न है कि राधा रानी इनकी शक्ति है पक्की बात, पर रुक्मणी जी का कहीं भी नहीं आता।
नहीं, ऐसा नहीं है।
रुक्मणी और बाकी उनकी 16,000 रानियां का कहीं भी ना वो नहीं आता।
नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं आता तो फिर कैसे पता लगे 16,000 रानियां हैं?
कि हर जगह राधा जी ही शक्ति के रूप में है।
एक्चुअली क्या है,
वर है कृष्ण जी का उनको, पर
मतलब श्रीमती राधा रानी सबसे सुप्रीम है।
हाँ, वो सुप्रीम है।
इसलिए हाँ। जो अन्य जो गोपियां हैं
हाँ।
वो उन्हीं की एक्सपेंशन है, श्रीमती राधा रानी की। उनमें से कुछ गोपियां हैं जो जीव तत्व में आती हैं, मतलब जो मंजरी के उसमें आती हैं, वो जीव उसमें आती है कैटेगरी में, वो पार्षदों में नहीं है, वो शक्ति में, अंतरंग शक्ति में नहीं है, वो तटस्थ में जो भगवान के नित्य सेवा में रहते हैं उनको मंजरी बोलते हैं। लेकिन जो रुक्मणी जी हैं और जो 16,000 रानियों में जो है उसमें जो प्रिंसिपल है वो 8 गोपीज हैं 8 गोपीज, और उनके अंदर जो सबसे प्रिंसिपल राधा है, इसलिए सबसे अधिक नाम, सबसे अधिक जो भगवान को सबसे अधिक जो प्रसन्न कर पाता है, जो प्रसन्न कर पाता है भगवान को सबसे अधिक, वो श्रीमती राधा रानी।
हाँ,
इसलिए हमें एक्चुअली ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। हम कभी कंफ्यूज होते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान की रानियां इतनी सारी, भगवान की सभी रानियां हैं, भगवान की सभी प्रकृति हैं, भगवान की तो सब पत्नियां हैं, कौन प्रकृति, हम भी भगवान की ही पत्नियां हैं, हम भी भगवान की प्रकृति हैं, हम भगवान की शक्तियां हैं सब। तो इसलिए भगवान कि उनको समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है, नहीं तो हमको लगेगा कि हम सोचते हैं कंपेयर अपने से करते हैं, सो लाइक दैट। तो
लेवल में ही नहीं हो।
यस, दैट प्रोग्राम व्हिच वाज डन रिगार्डिंग दैट ऑन द इश्कान,
हां,
इट वाज डन लाइक दैट ने,
क्या
राधा विल बी वेयर कृष्ण इज गोइंग टू मेक द फ्लूट टू सिंग, देयर द एयर व्हिच इज कमिंग एंड गोइंग इनटू द फ्लूट, दैट विल बी द पाम ऑफ राधा।
या मींस, या मींस
दैट इज द फाइनल कंक्लूजन वेयर द ड्रामा इज एंडेड इन दैट वे।
मीन्स श्रीमती राधा रानी भगवान की अल्लादनी शक्ति है, भगवान की तीन अंतरंग शक्ति, अंतरंग जो शक्ति बताई उसके तीन पार्ट हैं, संवित, सांवित और अल्लादनी। तो अल्लादनी आनंद देने वाली शक्ति जो है वो है श्रीमती राधा रानी।
एक चीज जो पूछना है,
हाँ जी,
जैसे जो हम कहते हैं भागवत,
हाँ जी,
नाम बोलते हैं भागवत कथा,
हाँ जी,
और गीता,
हाँ जी,
तो दोनों में मतलब क्या, ये भागवत मतलब पूरे इतने में सिमट गई है भागवत का, और भी मतलब इसके जो ग्रंथ हैं जो,
हाँ जी, एक्चुअली
जो मतलब कई जगह करते हैं जब भी,
हाँ जी, एक है भगवत गीता,
कहानी बताते हैं आपको,
हाँ जी,
बहुत सारे प्रसंग बताते, हाँ, हैं या किसी से कंपेयर करते हैं,
हाँ जी, हाँ जी,
चाहे आज के समय से किसी से भी, तो वो कहते हैं कि भगवत में इस चीज का उल्लेख है,
हाँ जी,
तो भागवत केवल इतने में कंसिस्टेंट है, ये केवल गीता अलग है और भागवत का फिर ओवर अलग।
यस, एक्चुअली एक भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, और एक है भगवत गीता।
हाँ।
भगवत गीता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो संदेश दिया वो है भगवत गीता, और भागवतम है भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतारों और उनके भक्तों के बीच का जो लीलाएं हैं उसे कहते हैं श्रीमद् भागवतम, जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर सुनाई उन्हें उसे भागवतम कहते हैं। वो हमारे पास अवेलेबल है, उसके 12 कैंटोज हैं भागवतम के। उसमें भगवान श्री राम, वराह, कुर्मा इत्यादि सभी अवतारों के कैसे कैसे अवतार हुए, सृष्टि का संघ कैसे होता है, पूरा डिटेल वर्णन है 12 कैंटोज में। और 10th कैंटो के अंदर भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन है, ऐसे पूरा कलयुग का वर्णन है, कलयुग में क्या क्या होगा वो डिटेल में पूरा, उसे भागवतम कहते हैं, श्रीमद् भागवतम।
कंडेंस रूप में मिनिमम कितना बड़ा होगा वो, जैसे कंडेंस रूप में हम लोग पढ़ना चाहेंगे?
एक्चुअली जैसे 10th कैंटो है उसका कंडेंस करके एक निकाला है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, कैन यू गिव दैट बुक? वो केवल 10th कैंटो का कंडेंस्ड है, बाकी तो अलग अलग कैंटो के रूप में ही है, पर सबसे इंपॉर्टेंट कैंटो भागवतम में 10th कैंटो माना जाता है।
यदि पूरे भागवत की स्टडी करनी
है, यस,
तो ऐसे 10 वॉल्यूम्स
देखना। हाँ जी, ऐसे एक्चुअली 10 नहीं, ऐसे ऐसे तो कम से कम 20 बैठेंगे, क्योंकि एक एक कैंटो के अंदर ऐसे ऐसे तीन तीन चार चार वॉल्यूम है, 10th कैंटो के अंदर ही इतने बड़े बड़े, क्योंकि एक एक श्लोक उसका, एक एक शब्द का अर्थ, उसका विस्तार। लेकिन वो आप इतना सुंदर है, वो लाइफ लॉन्ग वर्क है, हर दिन पढ़ते रहे पढ़ते रहे, एक एक उसमें इतना गहरा आनंद है। ये भगवद गीता ग्रेजुएशन है, श्रीमद भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन है। भगवद गीता बेसिक ABCD है, और उस भगवद गीता एंड होती है सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरे को सरेंडर करो, और भागवतम वहां से प्रारंभ होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर, सरेंडर कैसे हो भी, तो भागवतम वहां से प्रारंभ होती है। तो पहले भगवद गीता अध्ययन कर लें और उसके बाद फिर हम लोग श्रीमद भागवतम पे जाएं।
क्योंकि मतलब दैट व्हाट वी आर थिंकिंग यार, पर्टिकुलरली एज ए इंडिविजुअल।
हां जी,
क्योंकि जो मतलब बाकी चीज करना थी वो तो कर ली।
हां जी,
मतलब नाउ दैट अब ये जो और बचा है,
यस यस यस, एक्चुअली डेफिनेटली,
इसमें कितना मतलब दैट स्टडी करके जो भी ग्रास्प करें,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
व्हाट वी अज्यूम दैट यस अदर 20 या फिर 30 या मैक्सिमम, नाउ दैट एट दिस स्टेज वी कैन अज्यूम दैट
यस
मैक्सिमम 25
means
25 years मतलब आपको रहना है, ठीक है, मतलब ऐसे फैक्ट दिया अपन है
सर। एक्चुअली शास्त्र के अनुसार देखिए तो चार,
तो और 25 मतलब ऐसा सुनने में तो बड़ा वो लगता है, मतलब इट इज वेरी शॉर्ट पीरियड।
यस यस,
यदि कैसे कहें 25 इट इज वेरी शॉर्ट पीरियड।
एक्चुअली आप देखें
अभी से भगवान अभी से निरंतर भगवान
स्टेज।
एक्चुअली एक लोमश ऋषि, एक लोमश ऋषि हैं, लोमश ऋषि
आके हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट तो कुछ नहीं देखते।
यस यस यस, या या या,
मतलब करीब 10-15 साल से मतलब घर पे आके कोई नहीं देखते, ऑफिस में जितना हो गया
तो समय आप निकाल सकते हैं, यानी कि ना डेफिनेटली डेफिनेटली।
और घर में जो मतलब करते हैं बाकी फॉर ये मतलब दैट या तो फ्री टाइम इधर उधर या एंजॉयमेंट या वेस्टेज ऑफ टाइम व्हाटएवर यू कॉल इट,
और ये करेंगे ऐसा ग्रंथ है। देखिए हम नॉवल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, मन अशांति होता है। लेकिन अगर हम ये पढ़ेंगे तो आप देखेंगे घर वैकुंठ बन जाएगा। अगर सब मिलकर के ऐसे शाम को चर्चाएं हों भगवान के बारे में तो पूरा घर वैकुंठ हो जाएगा, कहीं लड़ाई नहीं होगी आपस में, कुछ नहीं होगा, मन शांत रहेगा और जानने को मिलेगा और हम भगवत प्राप्ति करेंगे शरीर छोड़ने के बाद। और इससे अच्छा क्या हो सकता है, ये सुप्रीम परफेक्शन है।